గోపి జన వల్లభ
Yeah. గురవే నమః
శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపాద్ధర్మమయం తదాపి స్వాపరాంతికం వందేహం శ్రీ గురో శ్రీ కృతాపదకమలం శ్రీ గురు
मैं मेरे को पता चला आप में से कई लोग गोकुल महावन गए आज दिवाली है आपकी अनुमति से ये बहुत पवित्र दिन में मैं कुछ बोलूँगा मैं गोकुल महावन के बारे में श्री कृष्ण भगवान मथुरा में प्रकट हुए, देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में। श्रीमद् भागवत के उन पन्नों में ये प्रकट किया गया और ज्यादा सूक्ष्म तरीके में बताया गया कि कृष्ण नंद और यशोदा के यहाँ पर भी प्रकट हुए गोकुल में। कुछ आचार्य श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं इस बात पर, ज़्यादा बताते हैं कि कैसे लीला प्रकट हुई। बताया गया कि एक यदु डायनेस्टी के उनके एक बड़े पुत्र एक राजा थे जिनका नाम था देवामीढ़, जो मथुरा के राजा थे। उनके दो पत्नी थे, उस जमाने में ऐसा होता था। उसकी एक पत्नी का नाम था क्षत्रिय परिवार से थी और दूसरी थी वैश्य परिवार से थी। तो क्षत्रिय परिवार से शूरसेन का जन्म हुआ और वैश्य परिवार से परजन्य का जन्म हुआ। परजन्य फिर गोकुल, जिसका नाम पहले बृहत मन था, वहाँ पर रहने लगे और वो इतने बड़े लीडर बन गए गोप और गोपियों के, जो अनाज उगाते, गाय की रक्षा करते। बताया गया परजन्य ब्राह्मणों की सेवा करते और उनके अंदर सब लोग थे, उनके अंदर सब दिव्य गुण थे। उनकी तुलना प्रहलाद और ध्रुव से की गई थी उनके भक्ति में, दूसरों के प्रति दया में, अपने इंद्रिय को वश में करने और उनका दान देने में बलि महाराज के समान थे और सिद्धांत में भीष्म के समान थे। ऐसे बड़े बड़े राजा भी जो हैं वो भी ग्वाल बाल थे। परजन्य का मतलब एक बादल और उसमें बादल के ही समान थे। बहुत बड़ी बरसात, दिव्य गुणों की बरसात थी। उनके अच्छे चरित्र से सारे सद्गुण प्रकट हो रहे थे। उनके पांच पुत्र थे, उनके उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंदनंद और नंदन, ये पांच पुत्र थे। उनके बीच वाला पुत्र जिसका नाम था नंद, नंद ने सबके हृदय को, ब्रजवासियों के सारे हृदय को जीत लिया। और एक ग्वाल बाल था जिसका नाम था सुमुखा, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम यशोदा था। और जिससे उनसे जो भी उनसे संबंधित होता है वो मंगलकारी बन जाते, वो जहाँ भी अपनी दृष्टि डालती वहाँ पर महिमा होती, प्रसिद्धि होती। हर एक व्यक्ति जो है उनसे प्रेम करते हैं। सुमुख ने यशोदा को विवाहित कराया नंद महाराज के साथ। जैसे पांच बच्चे बड़े होने लगे, परिजन ने निश्चय किया कि उन्होंने सबसे बड़े पुत्र को राजा के रूप में बनाए और वो वृंदावन के जंगल में चले, जिससे अपने मन को और हृदय को भगवान गोविंद के सेवा में अर्पण कर सके। एक बड़ा उत्सव मनाया गया। वासुदेव जी मथुरा से गर्ग मुनि भी आए। परिजन ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं भी सारे ब्रजवासियों की जिम्मेदारी उपनंद को देना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पर एक बात विशेष हुआ, उपनंद खड़े हुए और नंद महाराज के पास गए, उनको गले लगाया और कहने लगे कि मैं जब बोलने वाला हूँ ये सिर्फ अभी सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत विचार करने के बाद में और गहरे साक्षात्कार के बाद मैं अपनी इच्छा प्रकट करने वाला हूँ। अपने प्रेम से नंद महाराज ने हम सबको जीत लिया है और अपने स्नेह से हमारे हृदय को जीत लिया है। उनके सद्गुणों का ये लक्षण है, उनके आसक्त, हम सब उनके ऊपर निर्भर हैं। हमारे पर प्रेम दिखाया उसके ऊपर मैं सारे गोकुल के लिए बोल रहा हूँ। सारे ब्रजवासियों के हृदय में जो मैं कहने कि हम चाहते थे कि नंद महाराज हमारे राजा बने। हम नंद महाराज बहुत लज्जित हो गए, वो नहीं चाहते। बोले कि आप बड़े भाई हैं, आपको वृंदावन का राजा बनना चाहिए। लेकिन उपानंद सबके सामने उन्होंने राजा तिलक लगा दिया नंद महाराज के, और सब बोले राज की जय। और देवताओं ने फूलों की बरसात की इस मंगलकारी उत्सव पर। परजन्य इतने खुश थे, अपने पुत्रों के बीच में प्रेम देखकर इतने खुशी हुए। दुनिया के इतिहास में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, नेता बनने के लिए संघर्ष होते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, विशेष है। यहाँ पर भारत में हम देखते हैं औरंगजेब ने वृंदावन को इतना नुकसान पहुँचा कुछ समय के लिए, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, अपने बड़े भाइयों को उन्होंने मार दिया जिससे कि राज्य की शक्ति को हड़प सके। हम पूरे दुनिया में देखते हैं कि कैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी को नष्ट करने का प्रयास कर जिससे कि राज्य को प्राप्त कर सके। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं जिससे कि और ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए। और परिवारों में हम देखते हैं भाई लड़ाई करते हैं, कोर्ट में जा रहे होते हैं, एक दूसरे से घृणा कर रहे होते हैं, थोड़े शक्ति के ऊपर, और यहाँ पर हम देखते हैं वृंदावन के भाव में उपानंद, वो राज्य नहीं चाहते थे, वो सबको सुखी बनाना चाहते थे, और वे समझ गए कि नंद जो उनके छोटे भाई इतने योग्य थे, वो सबसे अच्छी सेवा कर सकते थे, वो सबसे ज़्यादा सुखी कर सकते, लेकिन उनके लिए उनको राजा बनने, मैं उनका सेवक बनूंगा। नंद महाराज की कोई इच्छा नहीं थी, उपनंद को राजा बनने, मैं उनका सेवक रहूँगा, और दोनों में सेवा की स्पर्धा थी। लेकिन मुख्य विचार एक ही था, लोगों को सबसे ज्यादा लाभ किस में मिल सकता, और अंततः आपने बड़े भाइयों की इच्छा नंद महाराज ने स्वीकार किया ब्रजराज बनने की इच्छा। नंद उपनंद उनके मुख्यमंत्री बन गए। नंद महाराज जो है उपनंद जो भी कहते उसके, और नंद महाराज वो करने के लिए तैयार थे। डर के कारण नहीं, आदर के कारण, प्रेम के कारण। ये वातावरण है जिसमें भगवान अपनी लीला प्रकट करने के, लीला करने के लिए प्रकट हुए। नंद महाराज के राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, हर एक व्यक्ति बहुत सुखी था, उनके जीवन में जो भी हो रहा था, अनाज उग रहे थे, गाय जो है दूध दे रहे थे, बरसातें हो रही थी, नदियों में जो है सुंदर फूल थे और सुंदर अमृत धारा बह रही थी। लेकिन एक चीज थी उनके हृदय में, सब वृंदावन के वो सबके हृदय में एक दुख था कि सालों साल बीतते जा रहे थे, नंद और यशोदा के पास कोई एक संतान नहीं थी। कृष्ण नंद बाबा के पुत्र बनना चाहते थे, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में नंद और यशोदा उनके माता पिता हैं, और इसलिए कृष्ण सारे ब्रजवासियों के हृदय में जो उनके घनिष्ठ मित्र हैं, इनकी इच्छा थी कि पुत्र हुआ, इनकी इच्छा थी पुत्र बनने की, वो ब्रजवासियों के द्वारा प्रकट हो रही थी। और नंद और यशोदा, नंद यशोदा की इच्छा थी कि उनको एक साथ एक पुत्र मिले। उपानंद ने एक यज्ञ किया, वृंदावन के कुछ लीडर्स के साथ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन नंद महाराज यशोदा माई को बोले, जो जिस प्रकार का बालक जो मैं हृदय में चाहता हूँ, वो कर्मकांड के यज्ञ के द्वारा नहीं हो सकता, कुछ बहुत ही विशेष, यशोदा माता से बता रहे थे बार बार, मुझे एक स्वप्न दिखाई पड़ रहा है कि एक बहुत सुंदर बालक जो कभी देखा गया, सबसे ज़्यादा सुंदर बालक, उनका नीला वर्ण है, उनके कमल जैसी आंखें हैं, के सारे अंग जो है मक्खन के समान, और ये बालक अपने होठों से मुस्कुरा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ उनको कि वो आपके गोद में हैं। उनको और आपका वात्सल्य प्रेम जो दूध से प्रकट हो और बालक को दूध पीने के लिए बहुत उत्सुक है। ऐसा बालक जो है वो यज्ञ के द्वारा नहीं हो सकता, सिर्फ भगवान की कृपा से हो सकता। यशोदा माई ने नंद महाराज से कहा, मैं भी वही देख रही हूँ, मैं सेम बालक का, मैं अपने गोद में उस बालक की दृष्टि देख रही हूँ। कैसे हम भगवान नारायण को प्रसन्न करें जिससे हमारे हृदय की जो अंदरूनी इच्छा है वो पूरी हो सके। यशोदा माई ने कहा कि हमें द्वादशी व्रत रखना चाहिए एक साल के लिए, और उन्होंने वो किया। इस तरह से उन्होंने अपने प्रेम बालक के लिए यज्ञ करना शुरू किया, जो उनके ध्यान का रूप था। भगवान नारायण को प्रकट हुए एक साथ स्वप्नों में, दोनों को स्वप्नों में। और भगवान नारायण ने कहा कि आप दुख क्यों प्रकट कर रहे हो, आप शुद्ध प्रेम से मेरी पूजा कर रहे हैं, इसलिए आपको सुखी होना चाहिए। मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। बहुत जल्दी ये बालक भी आपका पुत्र बनेगा। उसके कुछ समय बाद इसके बाद एक तपस्वी के रूप में, पूर्णमासी के रूप में आए। उसके पास एक छोटा बालक था जो बस पाठशाला से निकला है। जब वो गोकुल में आई, ब्रजवासी बहुत आकर्षित हुए और उनसे कहा, मैं संदीपनी मुनि की माता हूँ, मैं नारद मुनि की शिष्य हूँ और मैं आई हूँ जो यहाँ पर गोकुल में क्या होने वाला है मैं ज्ञान देने आई। नंद यशोदा बहुत जल्दी को एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वो बालक साधारण नहीं होगा, बहुत सुंदर प्रेममय पुत्र जिसके लीला सबके हृदय को विमोहित कर देंगे। जब ये बालक आएगा तो ये गोकुल को सारे खतरों से मुक्त कर देगा और सबके हृदय को सबसे आनंद से भर देगा, और वो बहुत ही विशेष लीलाएं करेगा। ये समाचार सुनकर वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने यमुना किनारे उसके लिए कोटिया बनाई जो पतियों से बनाई गई थी, और वो वहीं पर रहे वो बालक के साथ। पूर्णमासी कहने लगे कि ये बालक, इनका नाम है मधुमंगल। हम वही उम्र के रहते हैं, हम कभी बूढ़े नहीं होते। पूर्णमासी गोकुल आने के थोड़े दिनों बाद वासुदेव कंस के द्वारा पीड़ित होने पर मथुरा में अपने पत्नी रोहिणी को भेजा, जो कि 3 महीने उम्र के थे। उनको घोड़े पर लेकर उनको नंद महाराज के पास सौंप दिया। जब रोहिणी देवी और यशोदा माया आपस में मिले, दोनों में आपस में प्रेम, उनके हृदय का बंधन जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक दिन नंद और यशोदा को एक दृश्य दिखाई पड़ी। उन्होंने देखा उनके स्वप्न का सुंदर बालक एक दिव्य स्त्री नंद के हृदय से यशोदा के हृदय में स्थानांतरित किया गया, और फिर ये दिव्य स्त्री जो है वो यशोदा माता के गर्भ में प्रवेश किए, और उस दिन से यशोदा माई गर्भवती होने के लक्षण दिखाने लगे। ये बड़े उत्सव का अवसर माना गया। यशोदा माई के मात्र प्रेम के कारण अपने हृदय में कृष्ण को आनंद देने के लिए उनके अंदर जो कृष्ण को खाने में पसंद था वही चीज़ किसको भूख लगती थी। उनको विशेष चावल की भूख लगती जो कि कपूर और घी दूध से बनाए गए और स्वाभाविक शक्कर, जो कृष्ण को पसंद था वही उसको भूख लगती थी। रोहिणी की जब सातवें गर्भ था गर्भवती, कृष्ण की आज्ञा से योगमाया ने रोहिणी अर्धरात्रि में उठे, उनको एक स्वप्न आया, ऐसे उनको लगा कि बालक की मृत्यु हो गई है। वो बहुत आश्चर्यचकित, और फिर उनको पता चले, उनको स्वप्न आया, उनको बहुत खराब लग रहा था, और फिर योगमाया ने बताया रोहिणी को कि मैं अभी देवकी के गर्भ को आपके घर में भेज रहा। रोहिणी बलराम जी की शाश्वत माता हैं। जीव गोस्वामी के अनुसार रोहिणी 14 महीने के लिए गर्भवती थी, जिससे कि बलराम जी कृष्ण की उम्र के और एक साथ रह सके और लीलाएं कर सके। श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन, बलराम जयंती के दिन, श्री बलराम जी प्रकट हुए गोकुल में, और उसके तुरंत बाद भाद्र महीने की अष्टमी के दिन कृष्ण प्रकट हुए गोकुल में नंद और यशोदा को। जब कृष्ण प्रकट हुए यशोदा माया के हृदय से, योगमाया के प्रभाव से, वो इतनी थकी हुई थी, उसको पता नहीं चल रहा था क्या हुआ है। और उसी समय दोपहर अर्धरात्रि में मथुरा में भगवान नारायण प्रकट हुए, देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, अपने चतुर्भुज रूप से, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए, वासुदेव और देवकी कंस के जेल में बेड़ियों से बंधे हुए थे। उन्होंने भक्तिमय प्रेम और प्रार्थनाएं अर्पण की, जो उनके पुत्र के रूप में है। अपने मातृ स्नेह में देवकी ने प्रार्थना की कृष्ण को वासुदेव रूप में। कंस इतने साल इंतजार कर रहे थे आपको मारने के लिए, इंतजार कर मेरे 6 बेटों को मार दिया, मेरे 7वें की मृत्यु हो गई। अगर वो आपको देखेंगे इस सुंदर विष्णु रूप में और जान लेंगे कि आप उनके शत्रु हैं और आपको नुकसान कर सकते हैं, कृपया आपके इस रूप को ढक दो। जब उसने प्रार्थनाएं अर्पण किए, युगमाया जैसे फूल हवा में गिरता है, यशोदानंद को कृष्ण किसी को पता के बिना क्या हो रहा है, भगवान का चतुर्भुज रूप जो है वह द्विभुज में समा गया। वासुदेव को पहले कहा गया था कि बालक को गोकुल ले जाओ और यशोदा मैया के पास में रखो। जब यह अचिंत्य लीला हो रही थी जहां पर बालक कृष्ण द्विभुज रूप वाले वसुदेव और देवकी की ओर देख रहे थे, कंस के जेल में उसका पूरा राज्य, सब सो गए, सब कैदी, सब सिपाही सो गए और दरवाजे खुले, वो बेड़ियां खुल गए, वासुदेव बालक कृष्ण को लेकर गए। यमुना बहुत जोर से बरसात हो रही थी, ये अनंत शेष ऊपर प्रकट हुए छत्री के रूप में जिससे उनके ऊपर एक बूंद भी नहीं गिर सके। यमुना ने रास्ता दे दिया वासुदेव जी के लिए और वे गोकुल में आए नंद बाबा के घर में। उस समय वसुदेव जी ने बालक को कृष्ण के पास में रखा और हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत से कि जब वो जेल में लौट कर आए तो अपने आप बेड़ी आ गए और सब लोग उठ गए और वो लड़की रोने लगी। कंस को पता चल गया कि वो दौड़ते हुए गए, उसने देवी माया को मारने का प्रयास किया। देवकी उनको बोल रही थी कि इसको आपने सब मेरे बेटों को मारे, ये मेरी लड़की है, इससे कोई घबराने की बात नहीं, कम से कम एक बालक मेरे पास रहने दो, मैं आपकी बहन हूँ। उन्होंने बिना दया के उसको उठाया और उसको मारने का प्रयास किया। एक पत्थर पर वो फेंकने वाले थे और वो लड़की उनके हाथ से निकल कर ऊपर आकाश में चली गई और दुर्गा का रूप प्रकट किया, इसमें 8 हाथ थे, शेर के ऊपर सवार थे। और बताया कंस तो मूर्ख है, आप क्यों अपने बहन को तकलीफ दे रहे हो, कि आप जानते नहीं हो कि जो बालक तुम्हारी मृत्यु का कारण है उसका जन्म हो चुका है। और फिर वो अप्रकट हो गई। कंस से बहुत गंभीर हो गया उस समय, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहा। कंस वसुदेव और देवकी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। और उनको फिलॉसफी सिखाने लगे। वो कहने लगे कि मैंने आपको तकलीफ दी, आप मेरे माता, आप मेरे बच्चे, आपने मैंने बच्चों को तकलीफ दिया, मैंने आपके बच्चों की हत्या की, ये सब जानना चाहिए कि ये सब कर्मों के अनुसार होते हैं, हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, ये सब विधाता की इच्छा से। और वसुदेव और देवकी ने उनको पूरा क्षमा कर दिया और उनका आशीर्वाद दिया। वो इतने प्रेममय वैष्णव भक्त थे और उनको मुक्त कर दिया। वो जानते थे ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। जैसे ही कंस जब ईर्ष्यालु व्यक्तियों के संग में था तो फिर से उनके मन को प्रदूषित कर देते और फिर से उनको जेल में डाल देने वाला था। उस समय यशोदा मैया उठी और उनके पास में गोपाल लेटे हुए थे। ये सारे ऐश्वर्यों के भंडार हैं। कृष्णा नाम का अर्थ है सर्वाकर्षक। पराशर मुनि विष्णु पुराण में बताते हैं भगवान का अर्थ क्या है, सर्वाकर्षक, जिनके अंदर सारे ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं, सारी सुंदरता, ज्ञान, शक्ति, संपत्ति, महिमा, वैराग्य, ये सारे छह ऐश्वर्य जिसमें। कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो भी सुंदर, जो भी आकर्षक चीज़ इस दुनिया में दिखाई पड़ती है वे सब इसीलिए हैं क्योंकि वे जो मेरे परम ऐश्वर्य के अंश हैं। हम ये अनुभव देखते हैं, हम कितने मोहित हो जाते हैं दुनिया की चीज़ों से। वो शक्ति किसी में कैसे आती है, क्योंकि जो भी होता है वो सिर्फ एक चिंगारी है, कृष्ण के सूर्य का एक किरण के भी बराबर नहीं है। और यहाँ पर परम भंडार, सारी सुंदरता, सारे प्रेम के विषय दिखने में छोटे से बालक के समान, वो एक यशोदा माई के गोद के बिस्तर के पास लेटे हुए और वो बिल्कुल विमोहित हो गए हैं, ये जानते हुए कि निश्चित रूप से जानते हुए कि ये मेरा बेटा है जो मेरे गर्भ से आया है, जो कृष्ण के सुंदर चेहरे को देखने लगे, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, उसके हृदय का प्रेम जो है प्रकट हो रहा था, उसके बाल खड़े रहे थे और मात्र प्रेम से उनके स्तनों से दूध बह रहा था। उसका हृदय आनंद से नृत्य कर रहा था। बालक कृष्ण को गले लगाया। कृष्ण ने न केवल बालक के रूप में जन्म लिया, उसी क्षण सारे ब्रजवासियों के हृदय में भी जन्म लिया। सारे गोप और गोपियां, सबको अनुभव हो रहा था, वो हृदय में बालक गोपाल का अनुभव कर रहे थे। और कैसे अनुभव कर रहे थे, और एक विशेष शक्ति से उनके अंदर प्रेम जागृति, और वो जानते थे कि बालक का जन्म हो गया। रोहिणी और दूसरी गोपियां जो हैं यशोदा मैया के कमरे में गए और वहां उन्होंने देखा बालक गोपाल को। जैसे यशोदा मैया को बालक कृष्ण से प्रेम हो गया, हर एक व्यक्ति को ऐसा प्रेम हो गया स्वाभाविक रूप से। कृष्ण यशोदा के पुत्र थे, लेकिन सारे जो बड़े गोपियां और गोप थे उनको लग रहा था कि ये मेरा बेटा है। उनके अंदर ईर्ष्या नहीं थी, स्पर्धा नहीं थी। कृष्ण सबकी इच्छाओं को पूरी कर सकते थे। रोहिणी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी को भेजा आनंद महाराज के पास। जब ब्राह्मणी आई वहाँ पर गौशाला में, उस समय जब गायों का दूध निकाला जा रहा था, वो इतने खुश लग रहे थे जैसे जब उपनंद, नंद, अभिनंद, सुनंदन और नंदन सबने देखे। जब ने उनको देखा वो समझ गए कि सबसे बड़ा मंगलकारी समाचार आ गया है, वो प्रकट हो गया है। लेकिन वो फिर सुनना चाहते, उन्होंने पूछा क्या बताने के लिए आप आए हैं। वो इतने भावुक हो गए, वो इतने दिव्य आनंद में थे, बोलना भी मुश्किल हो रहा था। वो इतने खुश थे। कभी आपका अनुभव है कि आप इतने सुख है, इतने खुश हो कि बोल ही नहीं सके। किस तरीके से उसने बोला, और वो बोलने लगे कि वो बालक नंद, उनका जन्म हो गया है। नंद महाराज इतने खुश हो गए, नृत्य करने लगे, सारे बाल बाल गाने लगे। जैसे गर्मी के मौसम के बाद जब बरसात का पानी जंगल में आते हैं, मोर नृत्य करने लगते हैं अपनी पूंछ को उठा के, इस तरीके से नंद और सारे गोप नृत्य करने लगे। नंद महाराज स्नान किया, सब स्वच्छ कपड़े पहने, वो इतने भाव विभोर थे गोपाल को देखकर। वो दौड़ते हुए आ रहे थे जहाँ पर यशोदा मैया बैठे थे बालक के से। वो जब गिर पड़ते बेहोश रहते और फिर उठते, फिर थोड़े से चलते और फिर गिर जाते, फिर चढ़ चलते और फिर गिर जाते और फिर अंत में वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पर एक पर्दा था जो बंद था। यशोदा मैया पर्दे के दूसरे ओर थे और रोहिणी यशोदा मैया को बोले कि नंद महाराज यहाँ पर हैं। रोहिणी ने बालक को लिया, नंद महाराज के गोद में दिया, फिर पर्दा खोला और यशोदा मैया ने जब देखा कि अपने पति उनके प्रसन्न हुए, उनका सुख भी कई गुने आधा बढ़ गया। नंद बाबा ने बड़े उत्सव मनाने का निश्चय किया। वो दिन का नाम है नंदोत्सव, जहाँ पर ब्राह्मण मंत्र बोल रहे थे, यज्ञ कर रहे थे और इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे, सब जगह पर हरि नाम संकीर्तन हो रहा था। सब लोग इतने आनंदमय थे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने हुए थे। इस परिवार के ऊपर बहुत मंगलमय तय करने के लिए सब तरीके से उत्सव मनाया गया। इतने बड़े खुशी से मनाया कि गोप और गोपियों की संपत्ति अनाज में और दूध में थी। वो इतने सुखी थे, एक दूसरे के ऊपर मक्खन और दूध और घी फेंक रहे थे। एक बार हमने राधा गोपीनाथ मंदिर में ट्राई किया था, पूरा सब खिच पिच हो गया, बहुत गंदगी हो गई। सफाई करने बहुत समय लगा। वो कृत्रिम रूप से नहीं किया जा सकता, प्रेम अलग अलग रूप में किया जा सकता। लेकिन ब्रजवासियों में देखते हैं गोकुल में ये भगवान का दिया हुआ भेंट था उनके लिए। गायों के द्वारा या ईश्वर दिए गए थे दूध दही, ये सब जो अर्पण किए जा रहे थे ये बहुत मूल्यवान था। ये हीरे और मणि और सोने और चांदी से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जमीन से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वे एक दूसरे के साथ प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम दिखा रहे थे, एक दूसरे को सुखी बना रहे थे। ये प्रेम के आदान प्रदान के द्वारा किसी चीज को अर्थ तब मिलता है। सॉरी, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण सब कुछ चीजें नहीं स्वीकार करते, वो आपके इरादे को स्वीकार करते हैं। कोई चीजें हैं जो मन और इंद्रिय को तृप्ति की, कोई चीजें जो हैं वो हृदय को संतुष्टि नहीं दे सके। सिर्फ प्रेम ही है जो कि हृदय को संतुष्टि दे सकता है। और जब प्रेम जो है उसका केंद्र जब कृष्ण पर होता है, जब एक दूसरे कृष्ण का प्रेम प्रकट कर, जब आपस में स्नेह होता है, तो जब जो भी चीज अर्पण करते हैं वो अमूल्य हो जाते हैं। जब बड़ा सुंदर महल हो या पत्ता या फूल हो, जो स्नेह है वही उसकी कीमत प्रदान करता है। नंदोत्सव जो है वो संतुष्टि का उत्सव था, सब लोग उत्सव मना रहे थे आनंद से। और हमारे परम पूज्य गुरु महाराज श्री प्रभुपाद वो नंदोत्सव के दिन ही प्रकट हुए। जब सब बड़े खुशी से मना रहे थे ये उत्सव है कृष्ण को हृदय में प्रवेश कराने का, हमने हृदय में अपने जीवन, जब सब लोग खुशी से गा रहे थे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
कुछ समय बाद नंद महाराज अपना कंस को टैक्स भरने के लिए गए, क्योंकि कंस जो राजा थे सब राजाओं के ऊपर राजा कंस बहुत गुप्त रूप से वसुदेव जी से मिले। वासुदेव को जेल में डालने से पहले और वासुदेव जी ने नंद महाराज को बताया आप वापस जाओ, ये दो बालकों का ख्याल रखना चाहिए जो आपकी सुरक्षा में। और उसी समय जब कृष्ण कुछ ही दिनों के थे, कंस का मन बदल गया था और जब वो समझ गए कि जो उनको मारने वाला बालक है कहीं और प्रकट हो चुका है, तो उन्होंने कुछ अपने असुर दोस्तों को बुलाया मदद के लिए। 5000 साल पहले कलयुग की शुरुआत से पहले योगिक अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं सबसे अच्छाई के लिए, या बहुत भयानक कार्य करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। एक योगिनी का नाम था पूतना, वो एक राक्षसी थी, उसके पास बहुत बड़े अद्भुत शक्तियां थी, वह आकाश में उड़ सकती थी। उसका जीवन में जो इच्छा थी वो छोटे बच्चों का खून करते उनका खून पीते थे। वो आकाश में उड़ रहे थे, वो गोकुल में आए और अपनी शक्ति से उन्होंने अपना रूप बदल दिया। एक बहुत ही सुंदर, एक सुंदर स्त्री का, नारी का उदाहरण, वो इतनी सुंदर लग रही थी जो धरती का भी नहीं था, कोई स्वर्ग की देवी है। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी, सबने सोचा कि लक्ष्मी देवी आ गए, और पूतना इस वेश भाव में नंद बाबा के घर में चले, जहाँ पर यशोदा और रोहिणी पाल गोपाल के साथ बैठे थे। सबने इसको क्यों देखा नहीं, सबको लगा कि लक्ष्मी का विस्तारित स्वरूप है जो बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए। उनका इरादा था बच्चे को मारना। उन्होंने बालक कृष्ण को देखा और उसके हृदय में बोलने लगे कि ये जो बालक है ये मृत्यु का रूप है, और बालक कृष्ण ने उनको अपनी देखकर, बालक ने अपनी आंखें बंद कर दी, क्योंकि वो एक माता के रूप में आए थे, उनको मारने के लिए आए थे। जैसे ही कृष्ण ने देखा कि बोल, कृष्ण सोचने लगे कि इसने कई निर्दोष बच्चों की हत्या की, पूरे दुनिया में इतने बालकों की हत्या की है। श्रीमद् भागवत में समझाया गया, उसकी स्थिति ऐसी थी कि एक बहुत सुंदर तलवार जो है, जो कि बहुत सजे हुए अच्छे हुए सजे हुए कपड़े में रखी गई तलवार है, उसने बाल गोपाल को अपने सबके सामने उठाया और सब लोग बहुत सुखी देखकर, उसने अपने स्तनों में भयानक जहर लगा रखा था जो कि हजारों बच्चों की हत्या कर सकता है। और बालक के प्रति मात्र प्रेम देखकर उसने कृष्ण के मुंह में अपना दूध देना शुरू किया, कृष्ण को मारने का प्रयास किया। कृष्ण उनका दूध पीने लगे। कृष्ण की उम्र कुछ ही दिन थी और दिखने में भी ऐसे छोटे ही थे। जब कृष्ण कोई चीज को चूसना चाहते वो ऐसा कर सकते, कोई नहीं कर सकता, और वो ऐसा चूसने लगे इतना ज्यादा, इतने गहराई से, पहले दूध को पिया, पहले सारा जहर छीन लिया, फिर सारा दूध, और फिर उसके सारे उसके प्राण को खींच, उसके शरीर से खींचने लगे, और वो कमजोर हो रही थी, कमजोर हो रही थी, उसको इतना दर्द हो रहा था। और फिर उसके शुद्धिकरण को बताने के लिए कृष्ण छोटे उंगली से, कैसे छोटे बच्चे की उंगली कैसे होती है, इतने नरम लगते हैं और इतने कोमल लगते हैं, हमको लगता है देखने से उसको दर्द होगा। वो छोटी छोटी उंगली जो कि छोटे पत्तियों के समान, वो पूतना को दबाने लगे, उसको दर्द लगने लगा, बहुत भयानक दर्द होने लगा। और बालक को अलग कर रहे थे, लेकिन वो बालक बालक ने पीना शुरू किया और बाल पूछना बंद किया, छोड़ दो मैं छोड़ दो, और घर से बाहर निकली और खेत में चले गए, उसने अपने असली रूप प्रकट किए। कृष्ण का विरोध करना, उसका रूप था 12 मील ऊंचा था। आप बोलोगे असंभव है, क्योंकि आप नहीं कर सकते। लेकिन जिसके पास योगिक शक्ति है उसके लिए इतना सरल है जैसे आपके लिए खांसी करना। विशाल रूप में कृष्णा का वही रूप था, वो कृष्ण को नष्ट कर रहे थे और कृष्ण चूसते रहे। अंत में उसकी आंखें जो बड़ी हो गई, दर्द हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ी, उसकी मृत्यु हो गई। उसने बहुत सारे पेड़ भी तोड़ दिए और कृष्ण अभी भी खेल रहे थे। जब गोपियों ने देखा यशोदा माता ने सब देखा, तो गोपियां दौड़ते हो गए और कृष्ण को देखा कि एक बड़े पर्वत पर उसके शरीर पर और खेल रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। वो बस वहां पे थे, वो चल भी नहीं पा रहे थे। वो बाल कृष्ण को यशोदा मैया के पास लेकर आए। और जब नंद बाबा लौट कर आए रास्ते में देखा एक भयानक रूप है, 3.5 घंटे लगते हैं उसकी परिक्रमा करने में। वो बहुत बड़ा रूप था पूतना का। नंद बाबा ने देखा क्या हुआ, वो सोचने लगे। वासुदेव लगते हैं कोई सही बोला था, उन्होंने भी बोला था जल्दी लौटना क्योंकि कई खतरे आ सकते। उन्होंने पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, उसको जलाया और जब शरीर को जलाया गया उसमें से धुआं आ रहा था, वो इतना मीठा, इतना अमृतमय था, इतना सुगंधित था। जब कृष्ण ने उनका जहर छीन लिया, उसको पूर्णतः शुद्ध कर दिया, उसका शरीर जो है महाप्रसाद बन गया भगवान का, पूरा शरीर ही महाप्रसाद बन गया। और यही नहीं, श्रीमद् भागवत बताते, उद्धव और महान आचार्य बताते हैं कि कृष्ण ने पूतना को वो मुक्ति प्रदान की अपनी माता के रूप में, धाती के रूप में गोलोक वृंदावन में भेज दिया। ये कृष्ण भगवान का प्रेम है, उनको मुक्त कर दिया दुष्कार्य से। जो दर्द उन्होंने देखा, सारे पाप दूर हो गए उन्होंने कभी किए, सब पाप की प्रवृत्तियां भी। क्योंकि उसने कृष्ण को माता की सेवा दी और अंत में और आखिरी क्षण में मरने से पहले मात्र स्नेह जागृत किया। उनको परम मुक्ति दी गई, कृष्ण की धाई बनने का प्रेम में, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक धाम में। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं ये जो कृष्ण लीला में जो अलग अलग असुर हैं वो हमारे भक्ति में आने वाले अनेक बाधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूतना जो है प्रतिनिधित्व करते हैं नकली गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसा लगता है कि वो हमें बहुत अच्छा दूध दे रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने स्वयं के विचार उसमें भरे हुए हैं, वो जहर के समान हो जाए। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए दिव्य शुद्ध स्तोत्रों से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के। उस समय श्रीमद् भागवत ने बताया गया, वैदिक संस्कृति में बालक के हर एक दिन का उत्सव मनाया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं परिवार जीवन में सुखी होती है वैदिक संस्कृति के अनुसार। बालक को जब बोझा नहीं माना जाता है, उनको भगवान का एक भेंट माना, भगवान के द्वारा दिव्य भेंट मानी जाती है। जब बालक कुछ दिनों का होता है तो गर्भोदक संस्कार किया जाता है, और जब माता पिता जब बच्चे की प्राप्त करने की इच्छा करते हैं उसके पहले भी संस्कार होते हैं, और जब बच्चा चलने लगता है तब एक और संस्कार होते हैं। जब बालक करीब 3 महीने का होता है, जब वो अपनी पीठ को ऊपर कर लेते हैं, उसको उत्थाना उत्सव कहते हैं। जब यशोदा मैया देखा कि कृष्ण अपने आप को ऐसा कर रहे हैं, नंद बाबा को उन्होंने बताया कि ब्राह्मण को बुलाया गया और सारा वृंदावन इस उत्सव को मनाने के लिए आए कि बाल गोपाल जो अब उठना शुरू कर रहे हैं। हरि बोल, सब जगह पे कीर्तन और यज्ञ किया गया और इंस्ट्रूमेंट बजाए गए, और यशोदा और नंद वो सब अलग प्रकार के भेंट अर्पण करे। अगर आप आशीर्वाद देना चाहते हो, सबसे बड़ा प्राप्त करने का तरीका दूसरे को देना। ब्राह्मणों को गाय दान करते हैं, और हर एक गाय के ऊपर सोने से सजा हुआ था और सिल्क के कपड़े थे शरीर में, मोतियां और माला। जितना ज्यादा आप दोगे उतना ज्यादा आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब भगवान देखते हैं, कृष्ण देखते हैं कि हम कुछ बहुत विशेष कर रहे हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं, फिर कृष्ण हमें अनंत रूप में आशीर्वाद देते हैं। ये बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, बाल गोपाल बहुत थके हुए लग रहे थे, तो यशोदा मैया कृष्ण खुश करने के लिए, कृष्ण को सुलाने के लिए डाल दिए। और छोटे बालक जो 3 महीने के, उनको अपने माँ के साथ होते बहुत सुरक्षित महसूस होते, तो वो भी कृष्ण को गले लगा के उनको सुला देते, जिससे बाल गोपाल को पूर्ण आश्रय प्राप्त होता अपनी माता का और वो सो जाते। उन्होंने बाल गोपाल को एक शकट के नीचे रख दिया, बड़े गाड़ी के नीचे जिसके ऊपर सारे बर्तन थे जीव गोस्वामी के। वो बहुत बड़ा ये शकट, ये बड़ा का गाड़ी थी, और यशोदा मैया फिर व्यस्त हो गए, बहुत सारे अतिथि आए थे और वो सबकी अलग अलग सेवा कर रही थी, और उन्हें छोटे बच्चों को देखा जिसे कृष्ण को कुछ तकलीफ नहीं हो, और बाल गोपाल, और उनको भूख लगी यशोदा मैया के दूध के, वो रोने लगे। और जब वो रोने लगे उसके छोटे चरण कमल ने छोटा सा धीरे से टच किया, उसके पैरों ने गाड़ी के चक्र को स्पर्श किया, और तुरंत हमारे आचार्य बताते हैं श्रीमद् भागवत से, एक और असुर जो कंस का भेजा हुआ था, जो गोकुल में आया था, उसका नाम था शकटासुर। वो भूत था, उनका कोई स्थूल शरीर नहीं था, और ऐसे भूत जैसे व्यक्ति दूसरे शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करते दुनिया को उनको तकलीफ देने के लिए। वो विशेष करके कृष्ण को मारना चाहते, उन्होंने आकाश से अवसर लिया, वो इस शकट के अंदर छुप कर बैठा था, और कृष्ण इस बात को जानते थे, और बड़े निर्दोषा से थोड़ा सा स्पर्श किया कृष्ण, और चक्र को स्पर्श किया, जैसे स्पर्श किया पूरी जो गाड़ी आकाश में उड़ पड़ी, सब आश्चर्यचकित हो गए, अचिंत्य, उसके सारे चक्र टूट गए और एक्सल से अलग हो गए, उसके सब अलग अलग भाग टुकड़े टुकड़े हो गए, और पूरे कार्ड या नीचे गिरने लगे, सारे बर्तन जमीन पर गिरने लगे, आवाज आने लगी। नंद और यशोदा ने देखा, सब दौड़ते हुए आए, और देखा बाल गोपाल वहां मुस्कुरा रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, और शकटासुर उन्होंने कार्ड गाड़ी को भी नष्ट किया, शकटासुर को मुक्त कर दिया, उसको मुक्त मुक्ति प्रदान कर दी। और उस समय सारे ब्रजवासी सोच रहे थे, ये कैसे हुआ, क्या ये वज्र हुआ, ये अचानक कैसे हो गए, कैसे ये शकट डूर गया, और कृष्ण उसके अधीन थे, कैसे प्रभावित नहीं हुए। और जो छोटे बालक जो देख रहे थे, हम बताएंगे क्या हुआ, छोटे बालक ने अपने पैरों से मारा और सब सब हवा में उड़ गया और सब टूट गया, और सब बड़े कहने लगे, हम उस पर कौन भरोसा कर सकते, छोटे बच्चे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। जब पूतना को मारा गया, मुक्त हो गए, तो पूतना का भी वध हुआ, शकटासुर का भी। जब ब्रजवासियों का जो वात्सल्य प्रेम कृष्ण के प्रति, वो उसके कारण वो कभी सोचे नहीं थे कि वो भगवान है, उनको पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी भक्ति में बाधा आ जाती थी प्रेम। तो योग माया शक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति की तरह, जैसे आध्यात्मिक शक्ति किसी की ज्ञान को ढक देती है, उसके सर्वशक्तिमान स्वभाव को, वो ये सोच रहे थे कि ये हमारा बालक है, इसलिए वो सोच रहे थे इसलिए होगा क्योंकि हमने हमारा बालक इतना शक्तिशाली, और बालक ने हमारी रक्षा की, और यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को दिया और गले लगाया, आप फिर से मृत्यु से बच गए। और इसका मतलब है कि अगर बच्चा माँ का दूध अच्छी तरीके से पिए, मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा, कृष्ण ने चूसा और सब लोग बहुत सुखी हो गए। शकटासुर एक अनर्थ है, जो मानसिकता पुरानी आदतों को पकड़े रखना, वो भी हमारे मन में रहने वाला एक असुर है। जैसे ये कार्ट के बहुत सारे सामान था, और सब कुछ जो है बाद में जमीन पर गिर पड़ा कृष्ण को मारने के लिए। हमारी भक्ति, हमारे हृदय में जो कृष्ण है, हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि उसकी सुरक्षा की जाए, ये सारे ये जो बर्तन हैं ये सब हमारे पुरानी आदतें हैं जिसको हम पकड़ के रखे हैं। भोक्ताराम ये कहता है सम सर्वलोकमेश सुहृदम सर्वभूतानं ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भगवद गीता में समझाया गया है हम शांति बन सकते हैं जब हम ये समझ जाएं कृष्ण ही सबके मालिक हैं और एक चीज के स्वामी कृष्ण हैं। कृष्ण हर एक चीज के भोक्ता हैं और कृष्ण ही उनके परम मित्र हैं। लेकिन हमारी पुरानी आदतों के कारण हम स्वामी बनना चाहते हैं भोक्ता बनना चाहते हैं। ऐसे हर एक व्यक्ति जानता है कि ये बहुत मुश्किल है बुरी आदतों को त्याग करना बड़ा मुश्किल है। शक्टासुर एक भूत था। कभी कभी हमारी बुरी आदतें जो भूत की तरह वापस आ जाते हैं 10, 20 या 40, 50, 100 साल बाद कई जीवनों के बाद भी वो बुरी आदतें फिर से आ जाती हैं। एक ही तरीका है उसको उस समस्या को सॉल्व करने एक ही तरीका तानी सर्वण सैन्य युक्त आशितमस बरा कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि हमें किसी न किसी प्रकार से अपने आप को बुरी आदतों से बचाना चाहिए और साथ साथ अपने मन को भगवान कृष्ण पर केंद्रित करना है। जो भी हमने सीखा है अगर वो सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं अनुकूल रूप में तो फिर हम शुद्ध आदतों से मुक्त हो जाते हैं और फिर वो बुरी आदतें हैं वो भी दिव्य भक्ति बन जाती हैं। लेकिन जब हमारा स्वार्थ की इच्छाएं जो हैं जो भौतिक जीवन का जो है अगर हम उन बुरी आदतों को बनाए रखते हैं तो वो हमारे जीवन में उपद्रव पैदा कर लेते हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि बुरी आदतों को त्यागने का तरीका उनको अच्छी आदतों से बदल देना। हम सब आनंद की तलाश में वहां कृष्ण की सेवा में आनंद ग्रहण करना चाहिए एक दूसरे की सेवा में आनंद देना कृष्ण के लिए। परम करुणा पवे देवी जन निताई गौर चंद्र केवल आनंद कंद चैतन्य महाप्रभु बहुत सरल तरीके लेकर आए हैं जो कि आनंददायक है। बहुत अच्छा प्रसाद ग्रहण करने से सुंदर भक्तों का संग करना सत्संग कीर्तन में नृत्य करने से प्रेम में सेवा करने से भगवान के दिव्य लीलाओं का दर्शन करने से कृष्ण की कथाओं का श्रवण करने से और विशेष करके उनका अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं नाम और अपने हमारे मन में एक भाड़ पैदा कर सकते दिव्य आनंद से वो है नाम कीर्तन के द्वारा। कृष्ण पर सौभाग्य का बरसात करने के लिए नंद महाराज ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जिन पर वो भरोसा करते थे और उनको बुलाया ब्राह्मण को यज्ञ करने के लिए मंत्र के लिए कृष्ण के लिए उसके कुछ समय बाद वासुदेव गुप्त रूप से गर्ग मुनि को बुलाए, आप कृपया जाओ गोकुल में जाओ और नामकरण संस्कार करो ये दो बालकों के, रोहिणी के बालक और यशोदा के बालक। गर्ग मुनि गोकुल में आए छुप कर, नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुए उनका स्वागत करने के लिए और नंद बाबा ने कहा कि आप जैसे महापुरुष जो हैं हमारे ऐसे गृहस्थों के घर में आते हैं, आते हैं आप भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन वास्तव में आपका इरादा होता है हमें मुक्त करना, आपका संग प्राप्त करना और दिव्य ज्ञान देने के द्वारा आप हमें मुक्त कर रहे हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पर आए हैं, ये अवसर का हम लाभ उठाएं, ये दो बालकों पे आप आशीर्वाद दो, उनके नामकरण संस्कार करो। गर्ग मुनि ने कहा कि मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि अगर कंस को पता चलता है कि मैं यदुवंशी का एक मुख्य पुरोहित हूँ और मैं अगर आपके बालक के लिए नामकरण संस्कार कर रहा हूँ महावन में, तो वह समझ जाएंगे कि ये बालक जो है ये वही है और वो आपको और तकलीफ देंगे। नंद बाबा ने कहा फिर भी हम अवसर को खोना नहीं चाहते, हम गुप्त रूप से करें, हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, उत्सव नहीं मनाएंगे और ये गौशाला में ही करेंगे। गर्ग मुनि ने वो उत्सव किया और बोले कि ये बालक जो रोहिणी का वसुदेव का पुत्र है, क्योंकि वो जहां भी वो जाएगा वो आध्यात्मिक आनंद प्रदान करेगा, इसका नाम राम होगा, क्योंकि वे अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति प्रकट करेगा, उसका एक और नाम बलदेव होगा, और क्योंकि ये दोनों देवमीढ़ा शूरसन और परजन्य के दो वंश हो गए थे, मथुरा और महावन के जो वंश को जोड़े, क्योंकि ये दोनों वंश को साथ में लेकर आ रहे, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। और ये दूसरा बालक है शास्त्रों के अनुसार दिव्य दृष्टि के अनुसार और मेरे खुद के ज्योतिष कैलकुलेशंस में बता सकता हूँ कि ये बालक जो है ये हर एक युग में जन्म लेता है, अलग अलग वर्णों में अलग अलग क्रियाएं करता है। इसके पहले सफ़ेद वर्ण में आए सत्ययुग में, लाल कलर में आए त्रेता युग में और ये सुवर्ण रंग में भी आया है और अभी ये जो ये नीले एक बादल के वर्ण में प्रकट हुआ है। ये बालक ये सब प्रकार के मंगलमय ले आएगा, सबको सुख प्रदान करे, सबके हृदय को प्रसन्नता प्रदान करे। उसके कई सारे नाम हैं क्योंकि बहुत सारे अचिंत्य लीलाएं करते हैं। इसके पहले ये वासुदेव का पुत्र है इसलिए इसका नाम वासुदेव भी है, बहुत सारे असुरों का उद्धार करेगा। और मैं को बताना चाहता हूँ कि ये बालक ये धरती पे आता है भक्तों के सबके हृदय को आकर्षित करने के लिए, ये विशेष बालक है, उसके गुण जो है भगवान के ही समान, नारायण के ही समान है। बड़ा ध्यान रखना इसका, बालक का ख्याल रखना। गर्ग मुनि के जाने के बाद बालक कृष्ण और बलराम वो जमीन पर रेंगने लगे, जैसे वो चलने लगे धीरे धीरे, वो सब महावन के सारे ब्रजवासियों के मन को आकर्षित करने लगे। कृष्ण बलराम ऐसे चल रहे थे मान लो छोटे 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 सांप के समान, और उनके हाथ आगे बढ़ाने के वो सारे मिट्टी में अपने शरीर को स्पर्श कराते और माता पिता उनको बाहर निकालते, उनको गले लगाते, स्नान कराते और सब एकत्रित होते कृष्ण बलराम की लीला देखने के लिए। इससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं होता है किसी की भी दुनिया में, क्योंकि कृष्ण सर्व आकर्षक है। कुछ आजकल प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए लोग क्रिकेट गेम या फुटबॉल में मूवी में जाते, टेलीविजन देखते हैं सुख प्राप्त करने, और ज्यादा बड़ा टीवी रखते हैं, कभी राउंड स्क्रीन स्क्वायर स्क्रीन अलग अलग प्रकार के टीवी लोग घर में रहते, कभी नेचुरल सीनरी आते हैं नदियों के किनारे झरनों के पास। रजोगुण के लोग क्या देखना चाहते हैं, तमोगुण के लोग क्या, वो नशीले पदार्थ लेते हैं। इस तरीके से लोग प्रयास कर रहे हैं दुनिया में सुखी होने का, लेकिन वृंदावन में जब आप कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण को रेंगते हुए देखकर ही सबको बहुत खुशी होती है, अनंत आनंद प्रदान करते, कृष्ण ही सर्व आकर्षक है। लेकिन निश्चित है कि कृष्ण एक उंगली से गोवर्धन पर्वत धारण कर सकते हैं, तो वो उंगली के ऊपर पर्वत करते हैं, 7 दिन और 7 रात्रि को पर्वत को धारण करके रखते हैं। कृष्ण भी अपने भक्तों को ऐसा आनंद प्रदान कर सकते हैं, बस कैसे रेंगना, उसके द्वारा कृष्ण भक्तों को प्रसन्नता प्रदान कर। कृष्ण और बलराम ऐसे खेल रहे, कभी कभी जमीन पर रहते, कभी कभी उनको नुपुर की आवाज़ सुनाई पड़ती, रोहिणी और यशोदा वो पैरों में नुपुर पहनते थे। और माँ के वो दौड़ते हुए माता के पास जाते, चलते 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 जाते, और वो आवाज़ के पास में पहुँचते हैं और देखते हैं, कह रहे इधर दो दूसरे गोपी हैं। कृष्ण बलराम रोने जाते हैं और दौड़ते हुए वापस चलने लगते हैं, और यशोदा और रोहिणी उनको अपने उठा लेते, उनको गले लगाते, अपना दूध पिलाते, और सब बड़े आनंदित हो जाते, हंसते और मुस्कुराते और गाते थे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे।
एक दिन कृष्ण की उम्र 1 वर्ष थी, बड़ा उत्सव मनाया गया था कृष्ण के लिए, और यशोदा मैया कृष्ण को, उस समय कंस ने एक और असुर को भेज जिसका नाम था तृणावर्त, वो एक बवंडर के रूप में आया, वो एक बड़े तूफान के रूप में, और वो विशेष करके कृष्ण और यशोदा को मारना चाहता था। कृष्ण समझ गए जब भगवान धरती पे आते उनको कोई भगवान बनने के लिए योगिक सिद्धियां नहीं करनी पड़ती, भगवान हमेशा भगवान, बालक के रूप में उनके अंदर सारी शक्तियां होती। वो नहीं चाहते थे कि यशोदा माता को तकलीफ नहीं देना चाहते तृणावर्त, तो वो बहुत भारी बन गए, और यशोदा माता देखा कि अरे कृष्ण इतने भारी और पूरे ब्रह्मांड के समान भारी, उन्होंने कृष्ण को नीचे रखा, और यशोदा मैया सोचने लगी, और उन्होंने भगवान का आश्रय ग्रहण किया, भगवान की सुरक्षा के लिए भगवान का आश्रय लिया, और अपने कर्तव्य करने के लिए और फिर त्रिनावर्त आया, वो जोर से गरजने लगा, जोर से तूफान आने लगा, सबको बहुत कान बहरे होने लगे। इतना बड़ा तूफान आया और धूल इतनी थी जमीन से उठी और किसी को भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इर्द गिर्द में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, गाय बछड़ा नहीं था, अपने शरीर को भी देख पा रहे थे और देखने की तो बात छोड़ो, अपने आप को इतनी धूल थी कि अपने आप को नहीं देख पा रहे थे और बड़ा तूफान सब जगह फैल रहा था और सब इधर उधर उधर भाग रहे थे, पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन है। और यशोदा मैया वो ढूंढ रही थी, वो पता कर रही कृष्ण कहाँ पर है, कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और उसी समय तृणावर्त बालक कृष्ण को उठाया और धीरे 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 ऊंचे आकाश की ओर चढ़ने लगा। जब धूल पर चली गई तब यशोदा माता दौड़ते हुए गई देखने के लिए, कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे थे, सब लोग कृष्ण को ढूंढ रहे थे। वो इतनी चिंता में थी, वो जमीन पर गिर पड़ी जैसे किसी गाय के बछड़ा खो गया हो। तृणावर्त और ऊंचा गए और ऊंचा गए, बहुत ऊपर गए आकाश, और उनका पूरा ध्यान था कृष्ण को मारने का। लेकिन कृष्ण को बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि वो उनको ब्रजभूमि का बहुत अच्छा ऊपर दृष्टि मिल रहा था, उस पर अच्छा दर्शन मिल, उनको घूमने को भी मिल रहा था ऊपर, जैसे अभी हमने बच्चों को ऊपर उठने में चढ़ते, और कृष्ण को बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जब इतने ऊंचे पहुंच गए तब भगवान से जब बहुत हो गया, बाल गोपाल उनकी माँ के लिए बहुत भारी बन के, तृणावर्त के लिए सबसे बहुत हल्के बन गए, घास के तिनके की तरह बन गए जैसे कि ऊपर जैसे, और बाद में फिर और भारी हो गए अंत में, और फिर तृणावर्त को धारण नहीं कर सके और तृणावर्त उनको फेंकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बालकृष्ण ने बहुत असुर के रूप में उसने अपनी भुजा को उसके तृणावर्त के गले में लगा के रख उसको पकड़े रखने के लिए। तृणावर्त कृष्ण को फेंकने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कृष्ण से गर्दन को पकड़ लिया, उसकी गर्दन घुटने लगी और अंत और तृणावर्त उसके आंखें बाहर आ गए, श्वास बंद हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा और एक पत्थर के ऊपर गिर पड़ा और उसके सारे अंग इधर उधर गिर पड़े और गोपियां दौड़ते हुए कृष्ण को लेकर आए यशोदा मैया के पास में और उनको स्नान करवाए और अपना दूध पिलाने लगे और बहुत सारे मंगलकारी रीति रिवाज किए गए कृष्ण की सुरक्षा करने के लिए भविष्य में। ये कैसे संभव है, भगवान ऐसी अद्भुत लीलाएं कर, और किसी को शंका नहीं हुई कि उनको पता नहीं था कि उनके छोटे बालक ही कर रहे हैं, जो कि कर्म के कारण भगवान की दया से हमेशा सुरक्षित रहते। तृणावर्त जो है वो एक अनर्थ है हमारे हृदय का, मिथ्या अहंकार जो कि भौतिक विद्वता का फल होता है। बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होना वो एक महान गुण भी हो सकता है, ज्ञान जो है भगवान के ऐश्वर्य में से एक है, लेकिन यदि वो अगर इससे हम अभिमानी बन जाते हैं ज्ञान का सारा उद्देश्य जो है वो सब बेकार हो जाए, ये विरोधाभासक है।
सॉरी
प्लीज फॉर गिव। सच्चा ऐश्वर्य जो है, सच्चा ऐश्वर्य है अगर हम, अगर हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, जैसे कल हम गोस्वामी के बारे में कह रहे थे और उसके पहले वाले दिन भी बता रहे थे, और अगर ये ज्ञान वास्तव में उपयोग किया जा रहा है, उसका अगर साक्षात्कार किया जा रहा है, वो हमें बहुत नम्र बना दे। अमानी न मान देना तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरि। एक घास के तिनके के समान नम्र बनना, एक पेड़ के समान सहनशील और क्षमाशील बनना, दूसरों को सब आदर प्रकट करना और स्वयं मान की इच्छा नहीं करना अपने आप के, वो सच्चे ज्ञान का लक्षण है। क्योंकि वो ज्ञान है जो भगवान को आकर्षित करता है। ज्ञान जो है बिना सद्गुणों के वो बेकार है। देव दिग्विजय केशव कश्मीरी जब वो नवद्वीप में आए, उसको बहुत अभिमान था कि मेरे को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। बहुत बहुत सारे अनुयायियों को आकर्षित कर रहा, उसका अहंकार बहुत बड़ा हुआ था। जब बालकों ने निमाई को बताया उसके बारे में, उसके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे पाए, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो वो दिग्विजय उत्तर नहीं दे सकते। उसने पूरे दुनिया में सबको पराजित किया, और उसके जीव पर सरस्वती माता स्वयं प्रकट होती है। निमाई पंडित जो स्वामी है, अगर हम भगवान को प्रसन्न नहीं करते तो हमारी क्रियाएं बेकार हैं। उन्होंने जवाब, एक व्यक्ति जो है जो सद्गुणों वाला है, वो फल से भरा हुआ पेड़ है। जिस पेड़ में फल लगे हैं, वो पेड़ जो है हमेशा झुका रहता है। ऐसे ही वो भक्त जो है, जो भक्ति में आगे बढ़ा, सबको झुकता रहता है। लेकिन एक पेड़ जिसमें अच्छे फल नहीं, उसका सिर एकदम तना हुआ सबसे ऊपर होता है। तथा कथित ज्ञान का क्या लाभ अगर वो हमारे अंदर अच्छा चरित्र जागृत नहीं करता। कृष्णा ये सहन नहीं करेंगे, ये सिर्फ काल के समय आते हैं, जिससे कि अंत में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तृणावर्त एक भौतिक अस्तित्व के मिथ्या अहंकार की तरह हमें ऐसा लगता है कि हम और आगे जा रहे हैं, सबसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण हमें बचा सकती है, बचा हमारे हृदय के असुर से बचा सकती, अगर हम सच्चे दिल से उनका नाम, उनके महिमा का श्रवण करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, उनका नाम कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे चलने के बाद कृष्ण ने अभी चलना सीखना शुरू, ये अचिंत्य है। कृष्ण गीता में कहते, मैं व्यक्ति में योग्यता, मैं बुद्धि का बुद्धि मैं ही हूँ, शक्तिमानों का शक्ति भी मैं ही हूँ। लेकिन वही भगवान जो है वो चलना सीख रहे हैं। कभी कभी नंद और यशोदा उनकी उंगली में अपना हाथ देते थे और वो थोड़ा सा चलते थे और उसकी उंगली जो है गिर पड़ती, वो जमीन पर गिर पड़ते और रोने लग जाते, और वो बोलते फिर से प्रयास करो गोपाल, फिर से प्रयास करो। और बहुत जल्दी कृष्ण चलना शुरू किया। ये कैसे हो सकता है? जो आनंद प्रदान करना न केवल भक्तों को, लेकिन साथ में सबके हृदय को जीतने के लिए, जो कि सच्चे दिल से इन कथाओं को सुनता है, जो परम सत्य है जो है वो एकदम निस्सहाय अवस्था में है, अपने भक्तों के संपर्क में दिखे, ये हृदय को जीत ले। ये वृंदावन का विशेष पहलू है, वैकुंठ में जब परम भगवान नारायण जो है वो चलते या गिरते नहीं है, सिर्फ वृंदावन में देखा जाता है, क्योंकि वृंदावन है माधुर्य धाम, इसलिए उनके जो लीलाएं हैं वो अनंत मिठास से भरे हुए हैं। जैसे कि हम इसमें कि हम कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, जो परम भगवान के शक्ति का है, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं घनिष्ठता रूप से, हमारे मित्र के रूप में, हमारे बालक के रूप में, हमारे प्रेमी के रूप में, और कृष्ण आदान प्रदान करते हैं। जब कृष्ण ने चलना सीखा, सबसे पहली चीज के अपने मित्रों के साथ वो मक्खन चोरी करने लगे, आसपास के गोपियों के घर से चुराते। जो गोपियां, जो बड़े गोपियां और यशोदा मैया के पास है, शिकायत करने के लिए आते बाल गोपाल के, ये क्या शिकायत है? शिला प्रभुपाद समझाते हैं, तात्पर्य में बार बार बताते हैं दशम स्कंद में, ये जो लीलाएं हैं जो कृष्ण बालक के रूप में है, इतने मनोहर हैं, ये हमारी चेतना को पूर्णतः शुद्ध बना सकते हैं। अगर हम सिर्फ एक चीज कि हम थोड़ी सी रुचि जागृत करें और उनको भक्तों के संग बोलने से, और भक्तों के संग में हम भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों से दूर उठ सकते हैं। कृष्ण हमारे प्रेम के अंततः विषय हैं। यहाँ पर एक छोटे बालक के रूप में हमारे मन को मोहित करने के लिए, जिससे हम उनकी लीला में प्रवेश कर सकें। कृष्ण के बारे में सुनना और बोलना वो भक्त की अंततः पूर्णता है, क्योंकि जो शब्द की ध्वनि है कृष्ण के नामों की, कृष्ण के ये सब कृष्ण से अभिन्न है। हालांकि वो व्यक्तिगत रूप से कृष्ण है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामसे बजामे, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जैसे हम भगवान को समर्पण करते हैं कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं। हम यहाँ वृंदावन में हैं, जहाँ पर कृष्ण और की लीलाएं जो हम यहाँ पर आज बोल रहे हैं वो शाश्वत रूप से इस भूमि में हमेशा हो रही है लीला। अगर हम श्रवण और कीर्तन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं लीलाओं पर, हमारे हृदय की प्रामाणिकता के अनुसार कृष्ण उन लीलाओं को जो है प्रदर्शित करते हैं और हमें प्रवेश प्रदान करते हैं। योग की सबसे बड़ी पूर्णता, सबसे बड़ी मुक्ति का स्थान शास्त्रों के अनुसार। गोपियां यशोदा को मत देखो कि अभी तो कृष्ण आप खेल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ गलती नहीं की, लेकिन वो और उनके मित्र जल्दी उठते हैं, तो कृष्ण और उनके मित्र वृंदावन में घूमते ये देखने के लिए कौन सा दूसरा स्थान है जहाँ पर वो आक्रमण करना चाहते हैं। अगले दिन सवेरे पति के उठने से पहले बछड़ों को छुड़ा देते हैं और बछड़ों को माता के पास ले जाते हैं, और जब पति जाते हैं तो देखने कुछ होता ही नहीं है, और हमारे घर में आते और जब हम नहीं होते तब सारे बर्तन तोड़ने लगते, मक्खन और दही खाने लगते, और कभी कभी जब हमारे पति जो बड़े व्यक्ति वो बाल गोपाल को देखते मक्खन खाते हुए देख लेते, उनको रोकने का प्रयास करते, गोपाल उनको देखकर मुस्कुराते हैं और इतना मोहित कर देते हैं अपनी मुस्कुराहट से कि हमारे पति जो है मूर्ति की तरह बन जाते हैं। वो चल नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते, वो सिर्फ कृष्ण को देखते सारा मक्खन खाते हुए और कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में। और कभी कभी हम बोलते हैं कृष्णा तुम चोर हो, कृष्णा बोलते हैं कि और बोलते हैं कि तुम बड़े चोर, तुम चोर हो। और जब अपने मक्खन को चुरा लेते हैं छुपा लेते हैं तो कृष्ण कमरे में जाते, जब हमारे छोटे बच्चे उनके कानों में चिमटा निकालते उनको रोने लगते हैं। और कभी कभी हमारे मक्खन को चुराने के लिए छुपाने के लिए हम ऊपर रखते हैं और कृष्ण वहाँ आते हैं, कृष्ण के सारे मित्र आते हैं साथ में बलराम, एक के ऊपर बर्तन कई सारे मटके रखते हैं और ऊपर चढ़ते हैं और मक्खन निकालते हैं और स्वयं खाते हैं। और कृष्ण स्वयं नहीं खाते, अपने मित्रों को बांटते, जब वो पूर्ण संतुष्ट जाते हैं तो वो बंदरों को बुलाते हैं और बंदरों को अपने हाथ से मक्खन खिलाते हैं और मंकी खाते, बंदर भी खा रहे हैं, खा रहे खा रहे, और बंदर इतने खुश होते हैं, बंदर भी नहीं खाते। और फिर कृष्ण मक्खन को बोलते ये मक्खन बेकार है, बंदर भी नहीं खाएंगे। और कभी कभी अंधकार में कृष्ण ने इतने सारे मणि पहने, इतने चमक रहे हैं कि उसको पता होता है कि कहाँ पर खोजना है। और यशोदा मैया बोलती है कि ठीक है कल से मैं मणियां निकाल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, क्योंकि वो मणियों के बिना भी उसके बालक इतने विशेष हैं, इतने जहाँ भी वो जाते हैं प्रकाश फैला देते हैं। और जब हम कोशिश करते हैं अपना मक्खन चुराने के लिए, जब वो नहीं खो पाते हैं, वो हमारे मंदिर कमरे में जाते हैं और वहाँ पर जाकर पेशाब कर देते हैं। आपने कितनी बार पेशाब किया है? आप कंप्यूटर में कैलकुलेट करो सेलफोन और देखो कितनी बार आपने पेशाब किया है। एक सिंपल प्रश्न है, कौन परवाह करता है? कोई परवाह नहीं। लेकिन कृष्ण ने 5000 साल पहले एक बार पेशाब किया और उसका उसके बारे में चर्चा की जा रही है। ये भगवान और हमारे में अंतर है। हम उनके बारे में चर्चा कर और उसको सुनने के बारे में भी, एक घटना के बारे में सुन के भी, बड़े बड़े आत्म साक्षात्कार परमहंस जो रोते हैं प्रेममय भाव में, वो श्री कृष्ण सर्वाकर्षक। गोपियां यशोदा मैया से कहने लगे, हम सब शिकायत कर रहे हैं और कृष्ण जमीन पर देख रहे हैं जैसे कि बिल्कुल निर्दोष हों, लेकिन वास्तव में हम जानते हैं उनके मन में वो योजना बना रहे हैं, इस समय भी वो प्लान बना रहे हैं कि कब वो हमारा मक्खन फिर कब चुराने, उसकी योजना बना रहे हैं। कृष्ण मुस्कुरा रहे, यशोदा मैया जो गोपी कृष्ण को देखते हैं मुस्कुराए पाते हैं प्रेम के कारण हंसते, और यशोदा मैया को सोचने लगे कि हम तुम्हारे घर में शिकायत करने के लिए क्यों आते हैं, क्योंकि हमें बहाना मिलती है कृष्ण का बातचीत करने का, एक बहाना मिलता है। वो शिकायत नहीं कर रहे थे, वास्तव में कृष्ण का गुणगान कर रहे थे, वो भगवान का प्रेम बता रहे थे। कुछ बालकों ने पूछ, भगवान के मक्खन चोर क्यों है, क्यों मक्खन चोर आते, क्योंकि वह अंततः सबसे बड़ी नीति जो है भगवान से आ रही है। भगवान चोर कैसे से? भगवान चोर नहीं है, लेकिन वो चोर हैं। अपनी स्वतंत्रता के अनुसार सर्वलोका महेश्वरम, अगर हम समझना चाहते हैं इन सुंदर लीला को, भागवतम की समझना चाहते हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए, भगवत गीता के सार को पता होना चाहिए। हम सीधा श्रीमद् भागवत में नहीं जा सकते। कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में भगवान कौन है, जो सब चीज़ों के स्वामी है, जो सर्वलोक का महेश्वर है। सब कुछ हर लोक में, भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया में, वो सब भगवान की संपत्ति है। एक मालिक का एक लक्षण है कि हमारे ऊपर किस चीज कंट्रोल कर सके, चाहे हम सरल जीवात्मा गांव में रहें, चाहे हम करोड़पति हों या राजा हों, दुनिया का स्वभाव कि हर क्षण किसी भी क्षण छीन लिया जा सकता है। प्रभाव से मृत्यु निश्चित आने वाली, सब कुछ छीन लेने वाली, तो वास्तव में कोई भी चीज हमारी नहीं है। कृष्ण परम मालिक हैं हर एक चीज के, सारा वृंदावन का बंदर मक्खन भी उनका ही है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ उनका है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो चुरा रहे हैं। परंतु ये गोपी एक ही कारण है, वो दही को मंथन करते हैं और मक्खन बनाते हैं, यही आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण आएंगे चुराने के लिए, यही उनकी इच्छा। वो उनके प्रेम के साथ आदान प्रदान कर लेते हैं। कृष्ण का नाम है हरि, हरि का मतलब ये चुरा लेते हैं, सब कुछ अमंगल निकाल देने, हमारे हृदय को चुरा लेते। गोपियों का सबसे बड़ा प्रसन्नता है जब कृष्ण चुराने के लिए, उनके हृदय को चुराने के लिए आते हैं, जो कि मूर्तिमान स्वरूप है, उनके जो बर्तनों का मक्खन है। जब हमारा हृदय जो है मक्खन की तरह नरम और मीठे बन जाते, और उसका मंथन करने से भक्ति के द्वारा, तो फिर कृष्ण हरि वो हमारे हृदय को चुरा लेंगे, और उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं है। एक दिन जो बड़े गोपियां शिकायत कर रहे थे कृष्ण के विरुद्ध, फिर गोप आकर यशोदा मैया को शिकायत करने लगे। हमने कृष्ण को देखा एक निर्जन स्थान में, वो मिट्टी खाई, उन्होंने मिट्टी खाई। यशोदा मैया बहुत चिंतित हो गई, उनको बहुत कृष्ण के मक्खन चुराने के बारे में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मक्खन तो बहुत अच्छे है, लेकिन मिट्टी खाना, उनको बहुत चिंतित, वो बहुत चिंतित हुई कि कहने कृष्ण आपने स्वास्थ्य कैसे बनाए रखोगे अगर आप मिट्टी का, क्या घर में मक्खन और मिठाई और खीर इतनी सारी टेस्टी चीज़ हैं, क्यों आप मिट्टी क्यों खा रहे हैं? कृष्ण बोले कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया सहज के सारे मित्र से बोल रहे, और बलराम तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हारे सबसे परम मित्र, कभी वो झूठ नहीं बोलती, बलराम जी भी बोल रहे तो ऐसा जरूर सत्य होगा। कृष्ण बोले नहीं, हम गेम खेल रहे थे और वो मेरे पर क्रोधित हो गए। वास्तव में ये सब मक्खन चुरा रहे थे, मैंने बोला कि नहीं चुराना चाहिए। मैं उनको बोला कि तुम्हें मदर को बताऊंगा, और आप करने से पहले क्या हम आपके विरुद्ध हम झूठ बोलने वाले हैं कि तुम मिट्टी खाए, मैंने मिट्टी नहीं खाई। विश्वनाथ मैया कहने लगे, आप मुंह खोल के दिखाइए। ये बहुत, ये जो विचार हैं बहुत ही विमोहित करने वाले हैं। कैसे हो सकते हैं कि परम सत्य वो झूठ बोलता है? परम सत्य झूठ बोल ही नहीं सकता। परम सत्य, परम सत्य है। ऐसा कह कर कि मैंने धूल नहीं ली, वो यशोदा मैया का वात्सल्य रस को, उनका स्नेहमय को बढ़ा रहे हैं। और ये जो आदान प्रदान जो है मुक्त स्तर पे, यही सबसे बड़ा सत्य है। हम जो इस संसार के जो नीति अनीति का भगवान ही परवाह करते, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर जहाँ पर कोई अहंकार नहीं, जो स्वार्थ नहीं है, वो परम मुक्त अवस्था है। प्रेम की घनिष्ठता को बढ़ाने के लिए कृष्ण इस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। वात्सल्य रस और सारे रस जो हैं वो प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम का मतलब है आध्यात्मिक भावनाएं, वो प्रेम भक्तों के हृदय में निवास करता है और वो प्रेम प्रकट होता है कृष्ण के स्वाभाविक स्नेह के कारण, जो भक्तों के प्रति, कृष्ण का एक नाम है भक्त वत्सल, वो अपने प्रेम भक्तों के प्रति बहुत स्नेह दिखाते हैं। विष्णुचरण ठाकुर बताते कि जब सब कृष्ण के सारे गुणों में सबसे बड़ा गुण है कृष्ण परम दयालु हैं, परम शुद्ध हैं, परम ईमानदार भी, वो सर्वव्यापी ब्राह्मण है, वो अपने भक्तों के रक्षक हैं। लेकिन इन सारे गुणों का शिरोमणि है कि कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का भक्तों के प्रति स्नेह, कृष्ण के इस घनिष्ठ स्नेह के कारण कि हमारा प्रेम जो है वो जागृत होता है। और इसलिए कृष्ण का जो चुराना है, कृष्ण का झूठ बोलना है, सबसे सुंदर आभूषण है। क्योंकि ये रस को गहरा बना भक्तों और भगवान के बीच। कृष्ण ने कहा कि मेरा मूल को, मेरा मुख खोल के देखा। कृष्ण ने वास्तव में एक निर्जन स्थान में खाए, ब्रह्मांड घाट में, यमुना जी के तट पर, गोकुल में। या तो आप गए हैं या आप जाएंगे कुछ दिनों में। ये बहुत विशेष स्थान है। 1971 में मैं यहाँ वृंदावन में था, शिला प्रभुपाद आए, हमको कई घंटों तक अलग अलग तीर्थ स्थानों में ले जाते थे। एक बार राधामोदर, इमली ताल, नंदगांव, सब जगह बरसाना, सब जगह ले गए और गोकुल लेकर महावन में ले गए। उन्होंने यही कहानी बताया कि कृष्ण ने मिट्टी खाई, जहां पर लीला हुई वहीं पर बताया। अपने माँ के मन को विमोहित करने और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कि पकड़े जाने से पकड़ा नहीं जाता, तो कृष्ण को कृष्ण चाहते थे विमोहित करने के लिए. जब यशोदा मैया ने कृष्ण का मुंह देखा तो उसमें सारा ब्रह्मांड देखा, कृष्ण का विराट रूप उसने देखा. सारे लोक, सारे जीवात्मा, सारे देवता कृष्ण के मुंह में, सारे लोग देखे, सब समुद्र और पर्वत देखे, प्रकृति के तीन गुण देखे मूर्तिमान स्वरूप में, सृष्टि प्रलय और नाश सब देखे, सबका सब सब चीजों का, सारे आठ भौतिक तत्व दिए मूल स्तर पर. और सब 84 लाख योनि को देखा, वृंदावन को देखा, और फिर पास में देखा, अपने आप को भी देखा कृष्ण के मुंह में देखते हुए. जब यशोदा माई सब देख रही थी वो बिल्कुल अचिंत था. कृष्ण का मुंह तो बहुत छोटा था, सारा ब्रह्मांड उसी के अंदर था. ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड छोटा हो गया कृष्ण के मुंह में, ब्रह्मांड पूरे स्वरूप में था, अनंत स्वरूप. आज हमारे वैज्ञानिक जो समझ भी नहीं सकते, अपने बड़े बड़े टेलीस्कोप से नहीं समझ सकते. जो बड़े बड़े लोग हैं, यशोदा सब कुछ देख रहे थे कृष्ण के मुंह में, ये कैसे संभव है? ये अचिंत्य शक्ति है, भगवान की अचिंत्य शक्ति है. वो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी समय कहीं पर भी. यशोदा मई अपने मात्र प्रेम के कारण उसके हृदय के लिए असंभव था कि कृष्ण सर्वशक्तिमान हो सकते हैं. इसके लिए स्वीकार वो सोचने लगी, मैं क्या देख रही हूँ? वो सोच रही थी, क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं, मेरी आंखें खुली हैं, मैं जाग रही हूँ. क्या मैं भ्रम में हूँ? क्यों देवता क्यों मेरे जैसे गोपी को भ्रम में डाल के क्या फायदा? मैं भ्रम में नहीं हो सकता. और हो सकता है या मेरा मन, मेरे चेतना भ्रमित, लेकिन मैं ज्यादा योग्य हूँ. शारीरिक रूप से सब कुछ ठीक, मैं क्या देख रहा हूँ? मैं कैसे देख रही हूँ? क्यों देख रहा हूँ? ये क्या है? क्या ये, क्या मेरा बेटा कृष्ण बड़ा योगी है? कि गर्ग मुनि ने बताया, गर्ग मुनि नामकरण संस्कार के समय कहा था कि ये बालक ऐसे बहुत ही अचिंत्य क्रिया करेगा और ये भगवान नारायण के समान है. क्या ये हो सकता है? यशोदा मैया सोच रही थी, ये भी नहीं हो सकता. गर्ग मुनि को क्या पता है? जब कृष्ण को प्यास लगती वो मैं दूध नहीं तो रोने लग जाते हैं. जब भूख लगती है तो वो रोते हैं. जब तक वो मक्खन नहीं तो रोने लगते हैं. जब आकाश में बिजली कड़कती है तो कृष्ण डर जाते हैं और दौड़कर मेरे को पकड़ लेते हैं, कांपने लगते हैं मेरे से आश्रय लेने के लिए. और कृष्ण इतने शरारती हैं और वो मक्खन चुराते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं. गर्ग मुनि जो चाहे सोचने दो उसको, लेकिन मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकते और मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकते. और मैं जानता हूँ कौन है और मैं जानता हूँ वो कौन है. वही सत्य है, लेकिन फिर भी ये उनके मुंह में पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं. शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब किसी चीज से विमोहित हो जाते हैं जहां पर हम समझ नहीं पाते, तब हम इसके पीछे तर्क क्या है, ये क्यों हो रहा है, तब वो भक्त भगवान का आश्रय ग्रहण करता है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षा मानव भुंजा नैवात्म कृताम विपाकम। जब भागवतम के श्लोक में शिला प्रभुपा जी समझाते हैं, ब्रह्मा जी का एक श्लोक बताते हैं, जब अचिंत्य चीजें होती है, जब विपत्तियां भी आती हैं, जब बहुत से चुनौती आती है हमारे जीवन में, तो हम हो सकता है कि बुद्धि से नहीं समझ सकेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उस स्थिति में एक भक्त जो है भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, और बहुत तरीका है उस आश्रय का है, उनका उनके नामों को पुकारना, हृदय से कृष्ण की कृपा के लिए पुकारना, उनके नामों को पुकार के हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। यशोदा मैया पुकारने लगी हाथ जोड़कर, हे भगवान हे नारायण, मैं क्या देख रही हूँ, कैसे देख रही हूँ, मैं आपका आश्रय ग्रहण कर, आप सब कारणों के कारण हैं, आप सब कुछ करने वाले आप ही हो, आप अपने भक्तों के आश्रय हो, मेरे को आश्रय दो, कृष्ण की रक्षा करो, आपकी माया शक्ति के कारण मैं सोच रही हूँ कि मैं नंद महाराज की पत्नी हूँ, और मैं वृंदावन की रानी हूँ, और ये सारे गोपी और सारे गोप जो हैं, ये जो गाय हैं, ये जो जंगल है वो मेरा है, और मैं सोच रही हूँ कि कृष्ण मेरे बेटे हैं, और मैं कृष्ण की रक्षा कर रही हूँ, लेकिन वास्तव में आप सब ईश्वरों के ईश्वर है, सबके रक्षक आप ही हैं। वो इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे, इस ब्रह्मांड को देखकर कृष्ण के मुंह में, वो कृष्ण के बारे में चिंतित थे, ये कैसे डाइजेस्ट करेगा उसको, वो एक धूल के बारे में चिंता कर रहे थे, और सारे समुद्र सारे मानव सारे जानवर सब उनके मुंह में, वो नारायण को प्रार्थना करने लगे कि मेरे बालक की रक्षा करो, आप सर्वशक्तिशाली है, मैं समझ नहीं सकती। कृष्ण उनके कृष्ण देख रहे थे और सुन रहे थे, अपने मन में सोचने लगी कि अगर मेरी माता अगर बहुत दार्शनिक हो जाएंगे तो मेरे को कौन, और मेरे को अपने गोद में उठाएंगे, प्रेम मात्र प्रेम में कौन मुझे खिलाएगा। वो नहीं चाहते थे कि यशोदा माता एक विद्वान दार्शनिक बने, वो नहीं चाहते, वो कृष्ण चाहते थे कि यशोदा उनकी माता बने रहे। कृष्ण ने जस मुस्कुराए और उस मुस्कुराहट के द्वारा यशोदा मैया को ढक दिया योगमाया शक्ति, और वो सब भूल गए, जो भी उसने देखा था वो सब भूल गए, और उनके स्तनों से दूध बहने लगा, और कृष्ण को अपने गोद में रखा और वो उनका दूध पीने लगा, और उनका जब कृष्ण उनका दूध पीने लगे, कृष्ण पूर्णतया संतुष्ट हो गए। इस घटना में शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत से कहते हैं, यशोदा मैया का सौभाग्य का वर्णन करते हैं, तीन वेद परम सत्य की पूजा करते, यज्ञ पुरुष के रूप में जो उपनिषद हैं, जो भी परम सत्य की पूजा करें ब्रह्म के रूप में, जो सांख्य दार्शनिक जो शास्त्र हैं वो परम सत्य की पूजा करते हैं पुरुष के रूप में, जो योगिक सूत्र हैं वो भगवान को परमात्मा के स्वरूप में पूजा करते, जो पंचरात्र हैं वो भगवान की आराधना करते हैं भगवान के रूप में। लेकिन यशोदा मैया जो है इन सब से अनंत गुना ज्यादा महास्तर है, क्योंकि वो देख रही थी कि परम ब्रह्म को अपने पुत्र के रूप में देख रही थी, और कृष्ण देख रहे थे कि यशोदा मैया अपनी मेरी माता हैं, उनके प्रेम के द्वारा जीत ली गई। परीक्षित महाराज ये कहानी को सुन के सुखदेव को समझे पूछने रहे थे कि कौन है ये यशोदा नंद बाबा, ये है कौन कि उनको इतना सौभाग्य होगा कि भगवान के साथ उनका उनके साथ इतना प्रेम में संबंध था कृष्ण के साथ। और सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि पूरे जन्म में द्रोण और धारा नाम के व्यक्ति दो वसु थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की आराध्य की, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, उनको यही चीज चाहिए थी कि वो भौतिक जगत में जन्म ले, कि वो परम भगवान के माता पिता बन, उनकी घनिष्ठ लीलाओं को देख सके, उनको माता और पिता के प्रेम करे, कि जो भी इन कथाओं को श्रवण करता है कि हमारा प्रेममय संबंध हमारे बालक के साथ जो संबंध है वो भी मुक्त हो जाए सारे पापों से हमेशा के लिए, और उनको परम सौभाग्य प्राप्त हो, आध्यात्मिक दुनिया की प्राप्ति हो जाए। द्रोण और धरा दोनों ये विस्तारित स्वरूप थे कृष्ण के माता पिता जो गोलोक वृंदावन है उनके विस्तारित अंश अवतार थे नंद और यशोदा, नंद महाराज यशोदा मैया। एक दिन जब कृष्णा वृंदावन में घूम रहे थे एक फल बेचने वाली आई, जंगल से आई, उसके पास एक पत्तियों की टोकरी थी, फल लेकर जा रही थी, और वो एक जंगल में रहने वाली स्त्री थी, ऐसे समाज में जहां पर पढ़े लिखे नहीं थे, जंगल में रहने वाली थी। ये स्त्री जब पुलिंग पुकारने लगी, हे वृंदावन के वासियों, अगर आप में से कोई कुछ फल खरीदी करना चाहते, मेरे पास अच्छे पके हुए फल हैं। बाल गोपाल ने सुना, उन्होंने कुछ अपने हाथों में अनाज के दाने लिए, उन्होंने देखा था कि उनके माता और पिता और सारे ब्रजवासी जो कैसे वो कुछ भी खरीदी करने के लिए अनाज देते थे, ये क्रय विक्रय का एक तरीका है, जो हमारे पास है जो है देते और बदले में कुछ लेते। वो बाल गोपाल फल बेचने के पास गए और जब वो दौड़ रहे थे उनकी उंगली इतनी छोटे थे, सारे अनाज जो है गिरते जा रहे थे, और जब तक वो वहाँ पर पहुँचे बस कुछ उनके हाथ में एक दो ही गदाने बचे, और वो मुस्कुराए और बोले कि मुझे कुछ फल दे, ये दो फल के बदले में दे रहा हूँ। और वो फल बेचने वाले ने उस बालक के मुस्कुराहट को देखा, उसकी जो कृष्ण ने उनके पर दृष्टिपात की, जो कमल नायन ने वो फल बेचने वाले को विमोहित कर दी, कृष्ण के सुंदर मुख के ऊपर जो मुस्कुराहट थी वो ऐसे लग रहा था कि क्योंकि कुंद फूल की तरह मुस्कुराते हैं इसलिए उनका नाम मुकुंद है, वो बिल्कुल विमोहित हो गए। और उस समय तक उसके हाथ में ज्यादा अनाज रह नहीं थे, और फल बेचने वाले कि मैं आपको बाल खुशी करना चाहिए, जितने फल चाहिए सब ले लो, और उसने अपने एक फल करके और फिर उसके हाथ और उसके भुजाएं सब कृष्ण इतने प्रसन्न के मुस्कुरा रहे थे और कृष्ण दौड़ते हुए चले गए। भगवत गीता में कहा गया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ते आप प्रयच्छति। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता फूल जल फल भी अर्पण करता है, अगर भक्ति के साथ अर्पण किया गया तो मैं उसको जरूर स्वीकार करता हूँ। समसिद्धिर हरि तोषणम, कोई भी प्रयास की सफलता ऐसी जो भी हमारा कार्य हो वो है कृष्ण को प्रसन्न करना। कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं भक्ति के द्वारा, हमारे भक्ति के द्वारा। वो जो टोकरी थी उसमें सब मणि और हीरे सब भर गए, इस दुनिया के हीरे ने, दिव्य दिव्य हीरे मणि नीलम और बहुत सारे रत्न, और जो फल बेचने वाली कृष्ण के उसके मुस्कुराहट से इतने विमोहित हो गए, वो कृष्ण को और फल देना चाहते, सोचा कि मैं और ज्यादा और टोकरी दूंगी, मैं उनके परिवार को दूंगी, जो भी करना कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मैं करने को तैयार हूं। उन्होंने टोकरी उठाई, उसने देखा नहीं, वो घर में गई तो पता नहीं था फ्रूट से भरे हुए, घर से लेने लगी टोकरी में डालने लगी, देखा कोई जगह ही नहीं, उसमें इतने सारे मणि और हीरे भरे पड़े। और जीव गोस्वामी बताते हैं वो क्या सोच रही थी, सबसे बड़ी संपत्ति जो मैंने कभी प्राप्त की है वो है कृष्ण की सुंदरता। उसको इतनी गहरी कृष्ण से, कृष्ण की मुस्कुराहट से इतना विरह अनुभव रहता, इस दुनिया की किसी भी चीज से दिव्य थे, वो वापस लौटना चाहते और कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे और फल लेने के लिए, उसको मणियों से हीरो से लेना देना नहीं, उसको सबसे बड़ा मणि मिल गए थे कृष्ण की मुस्कुराहट। वो दौड़ती हुई गई कृष्ण के घर में गई, और उस समय कृष्ण उनके घर में गए सारे फल लेकर, और यशोदा मैया के पास, और बोले मैया मैया देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। यशोदा मैया ने कहा ये फ्रूट्स कहाँ से मिले, फल कहाँ से मिले। गोपाल ने कहा वो यहाँ पर एक स्त्री थी, ये एक जंगल की थी, वो फल बेचने हुए थे और मैंने उसको अनाज दिया, उसने मुझे फल दिए। और यशोदा मैया चिंतित हो गई, घर के तरह सब पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कृष्ण ने कहा कैसे किसी पे भरोसा नहीं किया, इसका मतलब वो कृष्ण। कृष्ण समझ गए वो फल बेचने वाली बाहर है, कृष्ण बाहर गए उसको संतुष्ट करने के लिए अपनी प्रेम में मुस्कुराहट से, उसने और फल बेचने वाले और फल दे, कृष्ण और अंदर लेकर यशोदा को बोले ये फल को सब रिश्तेदार मित्रों को फल बांट दो, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कृष्ण ने टोकरे लिया यशोदा मैया बांधने लगे, रिश्तेदारों को मित्र और गोप और गोपियों को बांटने लगे, जितने भी फल वो बांटते जा रहे थे और फल आते जा रहे थे। सैकड़ों सैकड़ों फल देते जा रहे थे, जिसने भी उस उस फलों के मिठास का अनुभव किया। जीव गोस्वामी कहते हैं अपने शाश्वत जीवन के लिए कभी वो उस फलों के मिठास को भूल नहीं सकता। और इस तरीके से कृष्ण ने इस स्त्री का मन को चुरा लिया। इसी को भक्ति बोलते हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी भी स्थान से कृष्ण नहीं देखते हमने क्या किया है, हम कौन है वो भी नहीं देखते, लेकिन हम सब शाश्वत आत्मा हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम शाश्वत कृष्ण के सेवक हैं। और अगर हम सिर्फ थोड़ा प्रेम भी कृष्ण को अर्पण करें, कृष्ण करुणा सिंधु हैं, आदान प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम अगर एक कदम अगर हम कृष्ण की तरफ लेते हैं, कृष्ण हजारों कदम हमारी तरफ ले सकते हैं। वो हमारी प्रामाणिकता को देखना चाहते हैं। हमें इस दुनिया के नकली हीरे मणि से क्यों आसक्त होना, जो हमें बांध के रखते हैं, आसक्ति बांध के रखते हैं। कृष्ण हमें सबसे बड़ा साक्षात्कार देने को तैयार है। प्रेम पूमार्थ महा, वो है एक भाव प्रेम का मणि। जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब इस दुनिया में आए हैं, वो फल को बांटने के लिए आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी में उन्होंने नाबंदी की, मैं एक फल बेचने वाला हूँ और मेरे फल जो है कृष्ण प्रेम के फल है, और मेरे पास इतने सारे फल है, अनंत फल है, मैं दुआ से बांट नहीं सकता इतने सारे फलों को। और इस दुनिया में कोई कलयुग में कोई लेना भी नहीं चाहता, मैं फल दे दूंगा प्रेम का। बहुत थोड़ी सी कीमत वह है भक्तों की सेवा करने के और स्वीकार करने की इच्छा। मैं सारे भक्तों को कह रहा हूँ, आने वाले भक्तों सबसे बड़ी कल्याणकारी सेवा करो, परोपकार कर, मेरे को मदद करो इन फलों को बांटने में नाम कीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज दिवाली है और हम इसलिए आयोजित करते हैं कृष्ण की दामोदर लीला का हम गान करें। मैं अभी एंड में कंक्लूड कर मैं अभी थोड़ा दामोदर लीला के बारे में थोड़ा, ये बहुत ही मनोहर लीला के बारे में। मैं अंत कर रहा है शरत कर, वो आप निश्चय कर सकते। यशोदा माया सोच रही थी कृष्ण क्यों इस तरह घरों में क्यों जा रहे मक्खन के लिए, क्या मेरा मक्खन को संतुष्ट नहीं कर रहा। नंद और यशोदा उनके पास 900,000 गायें थे, उसमें से 1,000 जो है सबसे अच्छा अमृत देते थे। उनके बहुत विशेष घास थे जो इतने सुगंधित, जो पद्मगंधा घास, घास की सुगंध जो है कमल की तरह बहुत नरम थे। बहुत टेस्टी थे घास और उससे अच्छा स्वास्थ्य होता। और हजारों गायों में से और वो 100 गायों को देते और वो सबसे अच्छे 10 गाए, और फिर वो कुछ गाए थे जो सबसे अच्छा पूरे सृष्टि में सबसे अच्छी गाय थी। वो दूध इतना नशे से पूर्ण है, वो वृंदावन का पूरा सार था, और यशोदा मैया उस गायों का दूध निकाल अपने हाथों से दही बनाते और उसको मंथन करते कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। उस दिन वह सवेरे उठे और जो उनके यशोदा मैया खुद करना चाहते, वो चाहते थे कि सारा हृदय जो है कृष्ण के लिए मक्खन के लिए। और जब वो मंथन कर रहे थे वह सुंदर दृश्य सुखदेव गोस्वामी बताते हैं इसके बारे। यशोदा मैया जब बहुत सुंदर उनके साड़ी थी जो कि पीले रंग की थी, जैसे मंथन कर रहे थे उनके उनके जो हाथों में कंगन थे वो ऐसे लग रहे थे कि संगीत के वाद्य के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इस तरह से आवाज आ रही थी। और यशोदा मैया कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण वो स्वाभाविक रूप से वो सुंदर कविताएं रचना कर रहे थे कृष्ण के रूप, कृष्ण की लीलाओं का गान, कृष्ण के गुणों का गान कर रहे। वो कृष्ण को स्मरण करने में लगे थे, कृष्ण के बारे में गा रहे थे, और साथ में आभूषणों की आवाज आ रही, अपना पूरा हृदय सेवा में लगा रहे थे। वो बड़े मेहनत कर रहे थे, उसको पसीना आ रहा था, और मालती फूल जो उसको बालों को सजा रहे थे वो नीचे गिर रहे थे। क्योंकि वो फूल भी उनके चरणों का आश्रय लेना चाहते थे वात्सल्य प्रेम को देखने के लिए, और उस स्नेह के कारण दूध उनके शरीर से दूध बहने लगा। और कृष्ण जो अगले कमरे में थे, कृष्ण भावग्राही हैं, अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं। यशोदा मैया के शरीर से जो दूध आ रहा है वो सिर्फ दूध नहीं है, वो तरल प्रेम है, बहुत घनिष्ठ अचिंत्य अनंत उनके हृदय का प्रेम है जो कि कृष्ण को अर्पण किया जा रहा है दूध के रूप में। कृष्ण इतने भूखे थे कि कुछ बोल नहीं सके, उठे वो छलांग लग के आए और गए जहाँ पर यशोदा मैया जो बना रहे थे मुख, उनकी तरफ देखने लगे, और उन्होंने जो मंथनी को पकड़ लिया और बोले मुझे दूध मुझे चाहिए था आपका, और दूसरा कोई कर्तव्य नहीं करना चाहिए। ये उनके दृष्टि का मतलब था कि जब मुझे दूध चाहिए तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यशोदा मैया का हृदय पिघल के वो नीचे उतर आए, कृष्ण को गोद में लिया और उनको अपना दूध पिलाने लगे। और जब पी रहे थे कृष्ण के सुंदर मुख को देख रहे थे, उनके सुंदर दांत देख रहे थे, जैसे वो कृष्ण के मुंह में देखते छोटे छोटे दूध के द्वारा, और वो गिनते थे कितने दांत आ गए, जैसे माताओं को अच्छा लगता है देखने दांत, बच्चों के दांत को देख, उनके आंखों से आंसू भर रहे थे, वो कृष्ण की सुंदरता को देख रहे थे, अपने प्रेम का दूध। और फिर अचानक दूसरे कमरे में देखा तो कुछ जो दूध पद्मागंधा दूध का उबाला जा रहा था कृष्ण के लिए, और वो दूध जो है उबाल रहा था नीचे अग्नि के कारण वो गिर रहा था। हमारे आचार्य समझाते हैं कि वृंदावन में हर एक व्यक्ति की चेतना होती है, हर एक चीज़ चिंतामणि धाम, कोई भी चीज़ यहाँ पर डेड मरने नहीं है। जो दूध वो उसका अस्तित्व ऐसे ही रहता है कि कृष्णा अगर मेरा स्वादन करें उसी का। लेकिन दूत सोच रहा था कि यशोदा मैया का प्रेम इतना महान, कृष्णा दूध पी रहे हैं उनके हृदय से, उनका प्रेम बढ़ता जा रहा है अनंत रूप से, और कृष्ण का रुचि भी बढ़ता जाएगा, मेरे अस्तित्व बेकार है, मैं अग्नि प्रवेश करता हूँ। और पानी इसलिए अग्नि में प्रवेश, दूध या अग्नि में, यशोदा मैया ने कृष्ण को रखा और दौड़ते हुए आए बर्तन को उठाने के लिए, और वो दूध फिर अंदर चला गया बर्तन में यशोदा मैया की दया के कारण। और उस समय कृष्णा सोच रहे थे, कृष्णा ने मुझे क्यों मुझे छोड़ दिया, मैया मेरे को छोड़ के चले गई। लेकिन वास्तव में यशोदा ये सब कृष्ण के लिए कर रही है, लेकिन कृष्ण और एक लीला करना चाहते थे जो कि हर एक भक्त के हृदय में रहेगी। लीला वो दिव्य रूप से क्रोधित हो गए, उनके दांत या होठों को काटने लगे, रोने लगे। एक पत्थर लिया और मटकी तोड़ी, बर्तन को तोड़ दिया। उसको तोड़ने के बाद, सब गिरने के बाद, कृष्ण सोच रहे थे मैं और क्या शरारत करूं मटकी तोड़ने के बाद। दूसरे कमरे में गए और वहां देखा जो पिछले दिन का मक्खन जो है ऊपर लटक रहा है रस्सी से। कृष्ण ने एक लकड़ी का एक उखल लिया, उसको उल्टा करके उसके ऊपर चढ़े और मटर मक्खन को लेने के लिए, और फिर बंदरों को बुलाया। सारे बंदर आने लगे, कृष्ण बंदर को मक्खन खिला रहे थे, और मक्खन इतने खुश हो गए, सारे बंदर इतने खुश हो गए। रामलीला में भगवान राम ने उनको जंगल में भेजा गया था 14 साल के लिए। उनके पास राज्य नहीं था, उनके पास कुछ संपत्ति नहीं थी, उनकी संपत्ति जो है और पेड़ों की छाल थी और धनुष्य बाण लेते हैं, और हनुमान सुग्रीव अंगद ये सारे बंदर जो हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने ब्रिज बनाए श्रीलंका जाने के लिए, बहुत गहरी लड़ाई की रावण के विरुद्ध, कुंभकर्ण के विरुद्ध, इंद्रजीत के विरुद्ध, सारी राक्षसी सेना के विरुद्ध। राम ने उनको बदले में कुछ भी नहीं दिया था, नहीं देने के। कृष्ण ने उन बंदरों को बोला और बताने लगे कि पूरे जन्म में तुमने बहुत सेवा की थी, मैं आपको मक्खन अभी बांटूंगा। वो मक्खन बांट रहे थे, कितना सौभाग्य होगा ऐसे एक बंदर बनना जो छलांग लगा रहे, कृष्ण आप पे कृपा प्राप्त करे। और हर एक बंदर सोच रहे हैं कि कृष्ण मेरे से प्रेम करते हैं, मेरे को सबसे अच्छा मक्खन दिला रहे, और कृष्ण उनको और दे रहे हैं। और यशोदा मैया लौट के आई, और जहाँ पर वो कृष्ण को भोजन कर रहे थे, और देखा कृष्ण वहाँ पर नहीं है, और वो सोच रही है कि मटका टूटा हुआ है, सब जगह मक्खन फैला हुआ है अपने आंखों से। वो समझ गए कि ये सब मेरे गोपाल की चालाकी है। उन्होंने देखा जमीन पर कृष्ण के चरण कमल के निशान, वो पद चिन्हों के पीछे पीछे चलने लगे। अगले कमरे में गए, उन्होंने छोटी सी लकड़ी ली, उनको लकड़ी रखना जरूरी था कि थोड़ा कृष्ण के मन में थोड़ा डर पैदा हो, इसे कैसा व्यवहार करना उसको पता चले। अगले कमरे में जाके देखा बालक गोपाल जी उस उखल के ऊपर बैठे हुए हैं और ये मक्खन को बंदरों को बांट रहे हैं, और जो ऐसे कर रहे थे उनकी आंखें जो है इधर उधर जा रहे थे डर के मारे, यशोदा मैया के डर से। बहुत धीरे सुख से वो पीछे से आए, वो कृष्ण को पकड़ना चाहते थे। जब वो जा रहे थे बंदरों ने हाथ में लकड़ी देखी, बंदर आवाज करने लगे, बंदर कृष्ण ने बंदरों को देखा, फिर यशोदा मैया दौड़ने लगे इधर उधर। यशोदा मैया कृष्ण के पीछे दौड़ रही थी, कृष्ण दौड़ रहे, यशोदा दोनों दौड़ रहे थे, कृष्ण तेजी से दौड़ रहे थे। और श्रीमद् भागवत में बताया गया कि वो परम सत्य वो मन से ज्यादा वो ज्ञानी भी सबसे ज्ञान वाले भी जो हैं वो भी कभी कृष्ण को नहीं स्पर्श कर सकते। योगी भी जो हैं जब बड़े बड़े सिद्धियां प्राप्त करने वाले कृष्ण को नहीं पकड़ सकते। ये कैसे हो सकता है कि एक साधारण गोपी जो कृष्ण को पकड़ ले। यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ नहीं देते, उनको शरारत के लिए सजा देने की। और जैसे दौड़ रहे थे उसको पसीना आ रहा था यशोदा मैया को, और फूल जो है जमीन पर उनके पैरों के नीचे गिर रहे थे, उसके चरणों का आश्रय ले रहे थे। वो फूल सोच रहे थे कि यशोदा मैया कौन है, उनका प्रेम का शक्ति इतना है कि उसने भगवान श्री कृष्ण को भी प्रेम से जीत लिया है। और अंततः जीव गोस्वामी के अनुसार जब कृष्ण सामने देख रहे थे, जब कृष्ण ने पीछे देखने के लिए तो यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया। जब कृष्ण पीछे की ओर मुड़कर देखने लगे कृष्ण मैया के द्वारा पकड़े गए, और फिर वो यशोदा मैया कृष्ण को डांटने लगे, कृष्ण रोने लगे। वो बोले लकड़ी को नीचे फेंक दो, लकड़ी को नीचे फेंक दो। यशोदा मैया ने कहा आप सब मक्खन चोरों के राजा हो। कृष्ण बोले मेरे को मक्खन चोर के राजा बने मेरे को पिताजी से तो नहीं प्राप्त हुआ, माता के रूप से प्राप्त होगा ये गुण। यशोदा मैया बोले आप बंदरों के राजा हो, क्योंकि आप बंदरों का संग कर तुम्हें बंदर की तरह बन गए हो। कृष्णा बोले अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं घर छोड़ के बंदरों के साथ रहूंगी। तो कृष्ण यशोदा मैया को लगा कि शायद वो बंदरों के साथ चले, मेरी इतनी सारी जिम्मेदारी कृष्ण के लिए और ब्रजवासियों के लिए, हो सकता है कि वो बंदरों के साथ चले जाए, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। उस समय गोपाल रो रहे थे और लकड़ी को, और कुंती महारानी अपनी एक सुंदर प्रार्थनाओं में वो ये इस दृश्य का वर्णन करते हैं। उनके अंग कांप रहे हैं डर के मारे, उनके होठ जो है थरथरा रहे हैं, आंखों से आंसू प्रवाह हो रहे हैं, जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ भ्रमण कर अपनी माता से अलग जाने, और उनके आंसू जो है काजल के साथ मिक्स हो रहे हैं जो आंखों के नीचे। जो कि एक बरसात के बादल की तरह है। कुंती देवी प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णा जो परम सत्य है, जो स्वामी के स्वामी, जिस डर भी उनसे डरता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी उनको मैया से डर लग रहा है। ये शक्ति है उन यशोदा के प्रेम, वृंदावन के प्रेम की शक्ति। कृष्ण कृष्ण ऐसा नहीं है कि डरने का बहाना कर रहे हैं, ये खाली दिखावा नहीं कर रहे हैं। वो मैया के प्रेम से इतने मोहित हो गए, उनके पितृ प्रेम से इतने आसक्ति, जितना उनका मात्र प्रेम बढ़ता है उतना कृष्ण का प्रेम बढ़ जाता है, और दोनों एक दूसरे को प्रेम से जीत रहे हैं। ये भगवान का सबसे ऊंचा साक्षात्कार है, सबसे ऊंचे स्तर के ऊपर वो राधा और कृष्ण की लीला के रूप में प्रकट होते हैं वृंदावन में। माता यशोदा बोल रहे थे, उन्होंने लकड़ी को फेंक दिया और मुझे अपने घर के काम करने चाहिए, मैं आपको बांध दूंगी, और क्योंकि ये उखल है इसने आपकी लीला में मदद की थी, मैं उसको आपके साथ बांध दूंगी। तो उसने रस्सी ली, सुंदर सिल्क की रूप वो बछड़ों को, जो बछड़ों को बांधने के लिए उपयोग करती है, जब गायों का दूध निकाला जाता है तो उनकी पैरों को बांधा जाता है। मदर माँ यशोदा जो गाय के समान थे और कृष्ण बछड़े के समान, तो कृष्ण की कमर में रस्सी से बांधने का प्रयास कर, जब उन्होंने किया तो दो उंगली कम पड़ रहे थे, छोटे दो उंगलियां। उन्होंने एक रस्सी ली और उसको दोनों को बांध दिया, उसको साथ में बांध दिया, वो अभी भी दो उंगली कम पड़ रहे थे। उन्होंने और एक रस्सी ली और एक ली और एक ऐसे बहुत सारे रस्सी ली, और हर समय देखा गया कि वो दो उंगली कम पड़ रही थी। यशोदा मैया आश्चर्यचकित हो गए, वो ये सोच रहे थे कि मैंने इतने सारे 150 फीट रोड रस्सी ले लिया और कृष्ण की कमर, कृष्ण कमर तो बढ़ नहीं रही है, वो इतनी छोटे से ही है, और फिर जितने भी और रस्सी डाले जाते हैं तो भी फिर दो उंगली कम पड़ रहे हैं, और फिर उनकी रस्सियां खत्म हो गई हैं, और दूसरे गोपियां अपने घर की रस्सियां भी लेकर, और ज्यादा रस्सियां देती जा रही है, यशोदा मैया बांटते जा रही थी, लेकिन हर समय ऐसे कर से दो उंगली कम पड़ रहे थे। ये अचिंत्य है, कैसे संभव है, कैसे भगवान को बांध सकते हो? ये परम सत्य है, वो पूरे अस्तित्व के कारणों के सब कारण है, सब कुछ कृष्ण के अधीन भी है और कृष्ण से अलग कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण के लिए अंदर और बाहर कुछ नहीं है, वो सर्वव्यापी ब्रह्म है, उनको रस्सी से कैसे बांधा जा सकता है? लेकिन यशोदा माता प्रयास करती रही और अलग अलग प्रकार के रस्सियां आ रहे थे और गोपी हंस रहे थे, वो रस्सियों का उत्सव बन गया, और गोपियां कह रहे थे यशोदा मैया को कि आप देख नहीं सकते, इस गोपाल के भाग्य में नहीं है कि आज बांधा जाए। और यशोदा मैया बोले, मुझे प्रयास करना चाहिए दो कारण से, एक कि कितने रस्सी की जरूरत होती है बाल गोपाल को बांधने के लिए, कितनी लंबी रस्सी चाहिए मैं इसको पता लगाना, और दूसरा कारण मेरे को गोपाल की रक्षा करनी है, उनको बांध के रखने से जब मैं अपने दूसरे घर के कार्य कर रही हूँ। यशोदा मैया बांध रही थी और अंततः उनके माथे से पसीना आ रहा था और कपड़े वस्त्र लूज हो रही थी, और कृष्ण उनके मेहनत को देख रहे थे जो वो अर्पण कर रहे हैं, और मात्र प्रेम से और अपनी स्वयं की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बांधने की अनुमति दी, जिससे अपने बंधन, अपने माता यशोदा के बंधन में आ गए। विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर बताते हैं देखी, ये दो उंगली चीजें क्या प्रतिनिधित्व करते हैं कृष्ण को जीतने के लिए। ये दो चीजें की जरूरत है, एक है सच्चा हृदय से प्रयास मेहनत, एक भक्त की मेहनत उनकी सेवा करने के लिए, उनकी साधना करने के लिए, शुद्ध बने रहने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करना। अंततः ये जो मेहनत और सच्चे प्रयास है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और जब कृष्ण ये देखते हैं तो अपनी दया प्रदान करते हैं। हमारे भक्ति के प्रयास से कृष्ण की कृपा को आकर्षित करती है, और ये दोनों के द्वारा हमारा प्रेम कृष्ण को जीत लेता है। इस सुंदर लीला में सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि कैसे ब्रह्मा, शिव और शाश्वत लक्ष्मी देवी भी, उनको वो कृपा नहीं मिली जो यशोदा मैया को प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को इतनी घनिष्ठ प्रेम किया अपने बेटे के रूप में, उन्होंने कृष्ण को बांधा अपने मात्र प्रेम के द्वारा। और इस दिन से उनका एक नाम हो गया दामोदर, जो कि बांधे गए हैं, जिनके उदर बांधा गया है, जो यशोदा मैया के प्रेम के रस्सी से बांधे गए। यशोदा मैया फिर अपने घर के कार्य करने में लगे, लेकिन जाने से पहले उनको बच्चों को बोला कि आप कृष्ण का ध्यान रखना। कृष्ण हंसने लगे, पहले रोने लगे हो फिर हंसने लगे, और मित्रों को बोले अब हम और शरारत करेंगे, और वो मजाक करने लगे। कृष्ण बंधे हुए थे, वो धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे चलने लगे और चलते चलते, और ग्वाल बाल उसके जय जयकार कर रहे थे, आप सब आप गोपियों के घर में जाओ। जब मक्खन चुरा के अभी भी मेरे लेके गोपी जा रहे थे मक्खन चुराने के, कृष्ण ने देखा आंगन में थोड़ी दूरी पर वो यमला अर्जुन वृक्ष हैं, बहुत बड़े ऊंचे वृक्ष, वो प्राचीन वृक्ष थे पर्वत के समान, बहुत गहरे, और अर्जुन वृक्ष बहुत गहरे जड़ होते हैं उसके। मेरे प्रिय गुरु भाई दीनबंधु प्रभु वो हमें बता रहे थे, एक बार मॉरिशस गए, यहाँ पर एक बड़ा तूफान आया था, कितने सारे पेड़ जो गिर पड़े, लेकिन जो अर्जुन पेड़ थे वो हिले ही नहीं, उनके बहुत बहुत जड़ जो है बहुत नीचे थे, उनका आधार बहुत तीखा, बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। गोपाल ने उस वृक्षों को देखा और वह समझ गए कि कौन वो थे, ये दो बेटे थे नल कुबेर और मणिग्रीव, उनको नारद मुनि ने शाप दिया था ये पेड़ बन जाने के लिए। और जब भी मेरा भक्त में किसी को शाप देता है वो हमेशा एक आशीर्वाद होता है, तो मुझे जाकर उसका नारद मुनि मेरे उनका नारद मुनि के शाप का आदर करना चाहिए, इनको सबसे ऊंचा प्रेम प्रदान करना चाहिए। किस तरीके से वो दो पेड़ वो कृष्ण की लीला को देख रहे थे हर दिन और हर रात।
deep. In brief, a very deep story, but we're getting very deeply late.
हम लेट हो रहे हैं, बहुत कहानी तो लंबी है. सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मणिग्रीव और नलक कुबेर, वो कुबेर के पुत्र थे, बहुत संपत्ति थे और इतने बहुत ज्यादा सुंदर भी थे, पढ़े लिखे थे, मशहूर थे, नौजवान थे, उनके अंदर सारे गुण थे और उनको बहुत अभिमान हो गया, नशे में चूर्ण थे और वो बहुत प्रकार की नशीली चीजें दे रहे थे. और जब सुंदर स्त्रियां उनके साथ खेल रहे थे एक सरोवर में, और वो सब बिना कपड़े के थे, और नारद मुनि वहां पर वहां से गुजरे, और जो स्त्रियां थे वो समझ गए कि ये बड़े साधु के कैसे हम उन्होंने पानी से निकल के अपने अपने कपड़े पहन लिए. मणिग्रीव और नलक कुबेर इतने अभिमान थे कि उन्होंने परवाह नहीं की कि क्या कपड़े पहनने के, किसी को आदर करने की जरूरत नहीं है. वो बिल्कुल नशे में चूर्ण थे, अहंकार थे, विमोहित थे. कुंती महारानी इस तरह से कहती हैं कि सबसे बड़ा दुर्गुण आध्यात्मिक जीवन के लिए है वह है ऊंचा जन्म, शारीरिक सुंदरता, बहुत सारी संपत्ति और बहुत ज्यादा विद्वता. क्यों इनको दुर्गुण बताया गया? क्योंकि हमें अभिमानी बना देते हैं. जब हम अभिमानी होते हैं तो आप दूसरों के प्रति अपराध करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं दूसरों ज्यादा श्रेष्ठ हूं, और ये अहंकार जो है हमारे सेवा भावना को नष्ट कर देता है. और इसीलिए सच्चे दिल से भगवान का नाम नहीं पुकार सकते. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल बनाया है. कैसे हमारी क्या हमारी अभिलाषा होनी चाहिए? प्रेम भक्ति, और हमें मिल जाती है भगवान की कृपा के द्वारा. जब हम इस हम गोपी भरतुर पद कमल दास 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 अनुदास जब हम दासों के दासों के दासों के दास बनते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पराजित किया जो सब विरोध को, सबसे नम्र स्थिति को स्वीकार करके हमें दिखाने के लिए, ये कैसे जब तक हम सच्चे दिल से भगवान का नाम नहीं पुकारते हम माया के विरुद्ध कोई शक्ति नहीं है. उनको पूर्ण स्थित में करके अपने धाम में वापस भेज दिया, और फिर ग्वाल बाल सब देख रहे थे. उन्होंने रस्सी को खोलने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि वह पेड़ जो यशोदा मैया के साथ द्वारा बांधी गई थी, जो कि फिर नंद महाराज आए और कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, कृष्ण अपने मित्रों के साथ मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, और फिर और देवता आए, मजा आ रहा था उनको कि देवता प्रार्थना कर रहे हैं. जब नंद महाराज उस बनाने के लिए, कृष्ण रोने लगे. नंद महाराज बोले ये दो पेड़ जमीन गिर पड़े और कृष्ण उनसे पास में इतने पास में और कोई कृष्ण पे नहीं गिरे, ये कैसे है? और यशोदा मैया वो बेहोश हो गई और वो बोले कि मैंने कृष्ण को बांधा, और बिकॉज बांधने के कारण अब और ये पेड़ गिर गया, वो शायद वो फंस गए हैं, वो बिल्कुल निस्तब्ध हो गए, निशब्द हो गए. श्री नंद महाराज ने कृष्ण को खोल दिया, वात्सल्य प्रेम से बांटे गए थे, और सिर्फ वात्सल्य प्रेम के द्वारा ही खोला जा सकता. कृष्ण को अपने गोद में रख गले लगाए, कृष्ण ने गले लगाया, नंद बाबा को गले लगाया, नंद बाबा सब ग्वाल बालों के साथ कृष्ण को यमुना की नदी के पास लेकर गए। वहाँ पर एक साथ स्नान किया और नंद महाराज ने कृष्ण को गायों के पास लेकर आए, उनको अच्छा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और फिर नंद बाबा कृष्ण को बोले अपनी गोद में रखकर, किसने आपको बांधा इस तरह? नंद बाबा को पता था, कृष्ण ने बोला।